हरे कृष्ण आज हम ईशोपनिषद का दूसरा और तीसरा श्लोक चर्चा करेंगे। तो ईशोपनिषद में जो पहला विभाग है जो इन्वोकेशन से शुरू होता है प्रस्तावना से जो तीसरे श्लोक तक यह ईशावास तत्व बता रहा है। ईश उपनिषद जो नाम आता है इसका ये ईशावास्यमिदं सर्वं जो शब्द है पहले श्लोक का ईशावास उससे आता है। तो कभी कभी ईशोपनिषद को ईशावास्य उपनिषद बताया जाता है। तो इस पहले विभाग में वो परम सत्य के बारे में पहले बताया कि वह पूर्ण है। दूसरे श्लोक में बताया कि वह तो प्रस्थान में बताया पहले श्लोक में बताया कि कैसे वह परम सत्य ने जो हमको दिया है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए क्योंकि सब कुछ उनका ही है। और अभी अगले दो श्लोकों में बताया जाएगा कि कैसे जो व्यक्ति इस ईशावास्य के तत्व अनुसार जीता है उसके जीवन में क्या परिणाम होता है उसका जीवन कैसे होता है। और अगले श्लोक में बताया कि जो ईशावास्य का पालन नहीं करता है उसके जीवन में क्या होता है। तो हम दूसरा श्लोक ईशोपनिषद है हम रिसाइट करेंगे। कुर्वन एवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन एवेह कुर्वन मतलब करना एवेह मतलब इस तरह से अवश्य ही इस तरह से। तो इस तरह से कर्माणि जो कर्म करता है उसके लिए क्या होता है जी विशेषतम समहा वह व्यक्ति सैकड़ों सालों तक जी सकता है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए कोई और मार्ग है ही नहीं बताया गया ना अन्यथेथोस्थी अन्यथा कोई मार्ग है ही नहीं। ऐसे इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बोलेगा कि मुझे सीढ़ी से नीचे नहीं जाना है आपको पांचवें मंजिल से सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं आप तो सीढ़ी से नीचे नहीं जाना है बोलेंगे तो और कोई मार्ग है ही नहीं है एक मार्ग हम कूद सकते हैं और वो कूदेंगे तो क्या होगा विनाश हो जाएगा। तो ना अन्य थे थोस्ती अगर कोई बोलेगा कि मुझे सीढ़ी से यहाँ से नीचे जाना है सीढ़ी नहीं इस्तेमाल करें तो और कोई मार्ग है ही नहीं क्योंकि न कर्म लिप्यते नरे इस मार्ग से जो हम जाते हैं जो ईशावास्य का मार्ग है उससे कर्म बंधन में फंसता नहीं है व्यक्ति। लिप्यते मतलब आसक्त होना तो व्यक्ति आसक्त नहीं होता है। तो अगले श्लोक में बताया कि कोई अगर से कूद जाता है मतलब ईशावास्य का पालन नहीं करता है तो उसकी क्या गति होती है। पावर पॉइंट रेडी है ठीक है। तो श्री प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक प्रधान थी नहीं जिजी विशेषतम समहा कि सब लोग चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए जीवित रहें कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है। तो सुचिंदन महाराज एक प्रसंग बताते हैं उनके जीवन से एक बार एक टैक्सी में जा रहे थे एक शहर में आए थे तो वो टैक्सी ड्राइवर को प्रचार कर रहे थे जब प्रचार कर रहे थे बोला कि तो बोलता है ऐसे सब हम सबकी मृत्यु आने वाली है इसलिए भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए बोले हम इतने मृत्यु से डरता नहीं हूँ। तो फिर कुछ नहीं बोले और फिर बाद में जब टैक्सी एक रेड सिग्नल पर रुक गई तो उनके पास एक ना फल काटने के लिए चाकू था तो चाकू निकाला और पीछे उसको पकड़ लिया और चाकू उसके गले में लगा दिया। डर गया वो क्या कर रहे हो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ क्यों डर गया था कांपने लग गया चाकू देखा सामने गले में चाकू है। और आपको महाराज आप सन्यासी के ड्रेस में नहीं थे कई बार सन्यासी जो होते पर बाकी देशों में सन्यास ड्रेस नहीं पहनते हैं कभी प्रचार के लिए तो डर गया बोला कि क्योंकि तुम मृत्यु से डरते नहीं हो और तुम्हारा ये टैक्सी बहुत अच्छा है मुझे अच्छा लगा ये बोला टैक्सी ले लो पर मुझे छोड़ दो तुम। तो फिर महाराज छोड़ दिया और बोला अभी तुम बोल रहे थे कि तुम्हें डरता है तुम डरते नहीं हो मृत्यु से वास्तव में वो मान लिया मैं सब डरते हैं मृत्यु से तो भले ही बोलेगा कि मैं डरता नहीं हूँ मृत्यु से पर ऐसे कभी नहीं है कोई डरता नहीं है। कई बार लोग आत्महत्या करने जाते हैं वो एक ट्रेन के रेल पर लेट जाते हैं और फिर जैसे ट्रेन का आवाज़ आ जाता है सीटें आ जाते हैं उठ के चले जाते हैं फिर किसी दिन कर लेंगे। तो क्या है कि जो वास्तव में आत्महत्या कोई कोई शौर्य का लक्षण नहीं है, पर वो भी एक प्रकार की कायरता ही है। पर पॉइंट यह है कि जो डर है मृत्यु का, वो सबके सबके जीवन में होता है। तो इसीलिए ये जो भवबंधन है, ये भवबंधन मतलब क्या है? हम बोले कोई व्यक्ति, हम कई बार शास्त्र बोलते हैं कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हम भवबंधन में फंसे हुए हैं। तो क्या भवबंधन है? कोई व्यक्ति बोलेगा मैं चाहूँ तो मैं क्रिकेट मैच देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मूवी जा सकता हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, कहाँ बंधन में फंसा हूँ मैं? तो वास्तव में बंधन क्या है? हमारा बंधन, प्रभुवा जी सुंदर उदाहरण देते हैं कि कभी कोई कुत्ते का मालिक है, वो कुत्ते को लेके जाता है, वो कभी कभी कुत्ते को लंबी रस्सी दे छोड़ दे, लंबी रस्सी होती है, जो लंबी रस्सी होती है तो कुत्ता इधर भागता है उधर भागता है, ये करता है वो करता है, और उसको लगता है मैं तो आज़ाद हूँ। पर वो चाहे वो उसके सामने दूसरी कुत्ती होगी, कुत्ती बोलते हैं मादा कुत्ता जो होता है, ओके जो भी बोलते कुत्ती, तो उसके सामने नाचता है, वो कितना अच्छे से नाचता हूँ दिखा रहा है, और वो सोच रहा है मैं आज़ाद हूँ, और वो मालिक चाहेगा तो वो नाच रहा है हवा में उड़ाए तभी खींच लेगा, और हवा में उड़े उड़े वो गिर जाएगा और खींचा जाएगा असहाय भाव से। तो रूपा जी बोलते हैं ये कुत्ता आज़ाद नहीं है। ठीक उस तरह से हमें हमारे भौतिक शरीर में कुछ आज़ादी है, कुछ स्वतंत्रता है, पर इस स्वतंत्रता का जो रस्सी है वो प्रकृति और अंततः भगवान के हाथ में है, और ये कभी भी छीनी जा सकती है। तो इसीलिए कोई क्रिकेटर है क्रिकेट खेल सकता है, कोई लखपति है वो बहुत अय्याशी कर सकता है, हवाई जहाज से दूर जा सकता है, पर ये कभी भी खींचा जाएगा, एक समय में कभी भी खींचा जाएगा, कोई बोल नहीं सकता इसका। अभी एक पिछले हफ्ते पुणे में एक MLA था, वो बहुत बड़ा वहाँ का दादा जैसे वहाँ आता था, और हमेशा वो गोल्ड की चेन पहन के घूमता था, तो हमारे मंदिर में भी आता था कभी कभी, मंदिर में दर्शन के लिए नहीं, दर्शन लेने के लिए आता था, दर्शन देने के लिए आता था कि उसका आदर संस्कार सत्कार चाहिए इसमें। तो सब लोग उसे डरते थे, और एक दिन अपने मीटिंग में बैठा था, ऑफिस में बैठा था, हार्ट अटैक आ गया, और ऑफिस में पहुँचने के पहले ही मृत्यु हो गई, और अस्पताल में पहुँचने के पहले ही मृत्यु हो गई, 5-6 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। तो खुद को इतना बड़ा राजा मान सकता है, खुद को बड़ा बड़ा दादा मान सकता है, पर क्या है? तो हमें किसी के पास भी आज़ादी नहीं है। इस भौतिक जगत में लगता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, पर कोई भी स्वतंत्र नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो ये भावबंधन क्या है, हम इस बंधन के अलग अलग स्तर आगे देखेंगे, पर एक स्तर क्या है कि काल हमें हम सबको बांध चुका है, और कभी वो बंधन की रस्सी खींचेगी हमें, हम बोल नहीं सकते। तो इसीलिए हम सब बंधे हुए हैं, और सब इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं। ये पंक्ति शब्द है, पंक्ति मतलब यहाँ पे हम पैराग्राफ ले रहे हैं, लाइन नहीं है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे हमारा हम कर्म बंधन में फंसे होने के कारण मृत्यु में मृत्यु हमको आता है। तो कर्म बंधन मतलब कि अभी आत्मा तो अमर है, अगर आत्मा अमर है तो आत्मा को मृत्यु क्यों भुगतनी पड़ती है? कोई बोल सकता है, अगर आत्मा अमर है तो आत्मा को मृत्यु क्यों भुगतनी पड़ती है? उसके जन्म लिया है तो आत्मा अजन्म है। आज भगवान कहते हैं न जायते मृते वा कदाचित, भौतिक शरीर का जन्म हुआ है ठीक है, पर भौतिक शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा को दुख क्यों भुगतना पड़ता है? कर्मों के कारण ठीक है, आत्मा मोह में है, बहुत अच्छा उत्तर है। मोह के कारण श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है कि जो 7वां अध्याय है पहले स्कंद का, पहले स्कंद में 4वां, 5वां, 6वां अध्याय जो है वो बताता है व्यासदेव नारद जी का संवाद, और फिर उसके बाद में नारद जी जब उपदेश देते हैं तो व्यासदेव ध्यान में चले जाते हैं, और ध्यान में देखते हैं वो तो जब उनकी ध्यान जो दृष्टि होती है वह ये श्लोक बताता है, यया सम्मोहिता जीवा आत्मानां त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपत्यते। तो पर जो आत्मा है वो परे है, पर सम्मोहिता वो मोह के कारण क्या हो गया है, वो खुद को भौतिक मान रहा है। जैसे अगर हम कोई पिक्चर देख रहा है, टीवी मूवी देख रहा है कोई, पर वो मूवी में और हीरो को पीटते, तो हीरो को पीटते है तो व्यक्ति डर जाता है, वो व्यक्ति कुछ नहीं हुआ है पर उसको लगता है मुझे पीटा गया, क्यों? क्योंकि आसक्ति है, आसक्ति के कारण वो खुद को उससे पहचान लेता है, मोह के कारण वो उससे उस कैरेक्टर से पहचान लेता है और फिर उसको मार दिया जाता है तो उसको लगता है मुझे मारा गया, फिर वो हीरो विलन को मार लेता है, मार मार ऐसे करते, तो क्या है वास्तव में उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, पर क्योंकि उसकी चेतना वहां पे चली गई है, चेतना के कारण वो क्या विचार करता है कि मैं बंधन में फंस गया, मैं ये सब भावनाएं अनुभव कर रहा हूं। तो ठीक उस तरह से जीवात्मा अजय है, वो शाश्वत है, पर जो शरीर से वो आसक्त हो गया मोह के कारण, वो खुद को शरीर से पहचान रहा है, इसीलिए शरीर को जो भी होता है उसके उसको दर्द होता है, उसको कभी सुख होता है कभी दुख होता है, और शरीर नश्वर है क्योंकि शरीर भौतिक है और सब भौतिक चीजें नश्वर है। तो इसीलिए अभी कर्म बंधन मतलब क्या कि हमारी इच्छाएं हैं, अभी कोई मूवी देखने क्यों जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा है भोग करना, क्योंकि उसकी इच्छा है भोग करना, तो उसके कारण वो भोग की इच्छा के कारण वो कर्म करता है और कर्म के कारण मोह में फंस जाता है वो। तो इस जो ये मूवी का उदाहरण है और हमारी परिस्थिति में एक फर्क यह है कि ये कोई मूवी देख रहा है घर में देखा तो टीवी कभी बंद कर सकता है या थिएटर से बाहर निकल सकता है, पर हम इतने आसानी से नहीं निकल सकते क्योंकि हम बंद गए हैं, तो उसको समय लगता है शुद्ध होने के लिए, मुक्त होने के लिए। तो जो भगवान बताते हैं 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवीता में, इस श्लोक को चक्रवर्ती पाद जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि ये भगवद्गीता का महावाक्य है। महावाक्य क्या है, ये मूल पुरुष प्रकृति स्थो ही भूते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। कहते हैं जो पुरुष है जो आत्मा है प्रकृति स्थो ही, प्रकृति में आ गया है, ऐसे कोई व्यक्ति आके थिएटर में बैठ के मूवी देख रहा है, वैसे आत्मा इस प्रकृति में भौतिक प्रकृति में आके स्थो ही बैठ गया है। क्यों बैठ गया है, भूते भोग करने के लिए, प्रकृति जान गुणा प्रकृति के जो गुण है उनका भोग करना चाहता है। जैसे जो टीवी पे या मूवी पे, मूवी में अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, अलग अलग ध्वनिया है, उनका भोग करना चाहता है जो देखने आ रहा है। कारणम गुण संगोस्य, और इस गुण के संगो के कारण क्या होता है, सत असत योनि जन्मसु, उसका अच्छा और बुरा फल मिलता है उसको। तो क्या है, जैसे हम इस भौतिक जगत में हैं तो क्योंकि ये शरीर नश्वर है और हम शरीर से पहचान कर रहे हैं खुद की, तो इसीलिए हमें दुख होता है, इसीलिए हमें वेदना होती है। तो हमारी इच्छा है कर्म करना, कर्म करने की इच्छा क्यों है, वो काम वासना के कारण है। कुंती महारानी की प्रार्थना है, उसमें कुंती महारानी अलग अलग कारण बताती है कि भगवान आप यहाँ पे क्यों आते हो। तो कुंती महारानी का प्रार्थना बहुत तत्वज्ञान से पूर्ण है, जो 8वें अध्याय में पहले स्कंद के 18 से 43 श्लोक में उसमें बताते हैं, वो 32 से 35 श्लोक में बताती है कि अलग अलग कारण भगवान क्यों आते हैं, और अंत में कारण बताती है भवेस्मिन क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी, कि अविद्या के कारण जीवात्मा काम वासना करता है, काम वासना के कारण कर्म करता है, कर्म के कारण क्लिश्यमानानां वो क्लेश भोगता है। तो हमारा सारे जो दुख है भवबंधन क्यों है, वो कर्म के कारण है। तो अभी कर्म तो कोई छोड़ नहीं सकता है, सबको कार्य तो करना है, इसीलिए जो मानव जीवन है उसमें हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे बंधन न हो। तो अभी प्रभुपाद जी हम बताते हैं तीन प्रकार के कर्म है, क्या तीन प्रकार के कर्म है, आज सुबह प्रवचन बता रहे थे, कर्म अकर्म और विकर्म, तीन प्रकार के कर्म है जो भगवान भगवीता में इसके बारे में बताते हैं 4वें अध्याय में 16 से 19 श्लोक तक। तो उसमें बताते हैं कि वास्तव में अकर्म का मतलब है कार्य न करना, ऐसे नहीं है, अकर्म का मतलब है ऐसे कर्म करना जिसका कि प्रतिक्रिया न हो, जिससे बंधन न हो। तो ये कैसे कोई कर्म से बंधन नहीं होता है, इसका प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। किसी को पता है उदाहरण? कोई व्यक्ति कार्य करता है और उस कार्य से उसको बंधन नहीं होता है। भौतिक जगत से एक उदाहरण देते प्रभुपाद जी। अगर कोई किसी और के लिए नौकरी कर रहा है तो वहां पे जो भी होता है उसको कुछ उसका भुगतना नहीं पड़ता, उसको अपनी सैलरी फिक्स्ड है। अच्छा एग्जांपल है। एनी अदर एग्जांपल? कैशियर। हाँ, कैशियर जब गिन रहा है तो उसका पैसा नहीं है। हाँ, तो और यहाँ पे एक और उदाहरण मैं देख रहा हूँ ऐसा कि जो कोई व्यक्ति बुरा कार्य भी करता है तभी उसको जो साधारण रूप से बुरा कार्य माना जाता है, पर वो अगर वो किसी के अध्यक्षता के अनुसार करता है, आदेश के अनुसार करता है, तो वो बुरा नहीं माना जाता है। ओके, 1% टाइम। यस, जल्लाद मतलब? ओके, एग्जीक्यूशनर, जो मारता है। आप बता देते हैं जो सैनिक युद्ध करता है। सैनिक जब युद्ध करता है, वह जब मारता है किसी शत्रु को, तो अकेले उसको कोई सजा दी जाती है, तो उसको शायद परमवीर चक्र दिया जाएगा। पर वही शत्रु, वही सैनिक अगर घर आके किसी और को मारेगा, अपने पड़ोसी को मारेगा, तो फिर को उसको परमवीर चक्र नहीं देंगे, उसको हथकड़ी का चक्र दे देंगे हाथ में। क्यों? क्योंकि वह जो रणभूमि युद्ध कर रहा है, वह देश के लिए कर रहा है। तो कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म का अर्थ है कि जो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है या नैतिकता के अनुसार कार्य करता है, वह कर्म है। तो प्रभुपाद जी तीनों की परिभाषा देते हैं, आप पढ़ सकते हैं। जो नैतिकता या शास्त्र के अनुसार है वह कर्म है, और विकर्म मतलब जो अनैतिक या अशास्त्रीय कार्य है। तो विकर्म चार प्रकार के है कलयुग में विशेष करके। कौन से है विकर्म? नशापान करना, अवैध संग करना, मांसाहार करना और जुगाड़ खेलना। ये सब विकर्म है। विकर्म का अर्थ है विरुद्ध रूपेण कर्म, जो हमको बुरे फल देते हैं। और अकर्म मतलब ऐसे कर्म जो कोई फल नहीं देते हैं, वह है खास करके भक्ति कर्म। तो भक्ति में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमें कुछ उसका फल नहीं मिलता है। हमें एक ही फल मिलता है, क्या? हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो सबसे पहले बताया कि हम सब कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो कर्म बंधन से निकलना है तो हमें क्या करना है? उचित कर्म करना है। और उचित कर्म, हमारे पास तीन चुनाव है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो हमें अकर्म करना सबसे अच्छा है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीन जो चुनाव है, कर्म, अकर्म, विकर्म और अकर्म, ये केवल मानवों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। जानवरों के लिए नहीं है, क्योंकि जानवरों में लगभग स्वेच्छा जो है वो लुप्त हो जाती है। जानवर अपने शारीरिक प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे अगर कोई चूहा जा रहा है और बिल्ली देखती है, तो बिल्ली चूहे को देख के सोच नहीं सकती, अरे आज एकादशी है। उसमें कोई आत्मनियंत्रण नहीं है उसपे, क्योंकि वो शारीरिक प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करती है। तो क्योंकि वहां पे स्वेच्छा नहीं है, इसीलिए कर्म बंधन नहीं है। तो जब ही आत्मा होता है, तो आत्मा, अगर कुत्तों का भी अलग अलग प्रकार होता है। कोई कुत्ता जो होता है सड़क पे घूमता है, सब उसको पत्थर मारते हैं, और कोई कुत्ता एक रईस व्यक्ति के घर में रहता है, उसे कार में फ्रंट सीट में घूमता है उसके साथ। तो अभी दो कुत्तों का भी अलग अलग स्तर क्यों हो जाए? एक कुत्ता इतना गरीब और दुखी है, दूसरा कुत्ता इतना सुखी है, उसको खास कर बिस्किट मिलते हैं। मेरे एक मित्र है, बता रहे थे उसके, वो अमेरिका से मित्र है, वो बता रहे थे कि उनका एक घर में कुत्ता था। तो कुत्ते को कोई एक दिन वो बेहोश गिर गया, तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए और बोले कि इसको हार्ट अटैक आ गया, कुत्ते को हार्ट अटैक आ गया। तो कुत्ते को बचाने के लिए उन्होंने उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी, और ओपन हार्ट सर्जरी के लिए उन्होंने कुछ 12 लाख रुपए खर्च किए कुत्ते के लिए। तो कलयुग में या निशा सर्वभूत नाम तस्याम जागृति संयम, कि भगवान के लिए एक पैसा देने जाएंगे तो कुत्ते पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे। तो तो यहाँ पॉइंट में ये बता रहा था कि कुत्तों के जीवन में भी अलग अलग फर्क होता है। तब ये फर्क क्यों है? वो भी वो आत्मा के कर्म के अनुसार है। वो जब आत्मा मानव शरीर में था तो उसने अच्छा कर्म किया, उसने बुरा कर्म किया है उसी कुत्ते का शरीर मेरा, पर बहुत बुरा कर्म किया है तो कुत्ते के शरीर में भी बहुत दुख भुगतने पड़ते हैं। और ज्यादा बुरा कर्म नहीं किया है तो कुत्ते का शरीर तो मिल गया पर कुत्ते के शरीर में सुख मिलता है थोड़ा बहुत। तो ये जो कर्म, तो कुत्ते के शरीर में वो कोई कर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पूरे का कर्म खत्म कर रहा है वो। और फिर बाद में पूरा पूर्ण का कर्म खत्म हो जाएगा तो फिर वो मानव शरीर में आ जाएगा। मतलब ये कैसे होता है कि मान लीजिए उसने ये ऐसे जो कर्म का नियम है वो उसको हम गणित से गणना नहीं कर सकते हैं, पर ये समझने के लिए है कि उसने 100 मात्रा में बुरा कर्म किया है तो फिर उसका जो हमारा बुरा कर्म 3 स्तर पे हमको मिल सकता है। एक है कि ऊर्ध्वम जघन्य विभक्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, कि एक तो नरक में कुछ दुख मिलता है, तो मान लीजिए उसमें 30 जो मात्रा है नरक में मिल गया। फिर उसके बाद में जो 20 मात्रा है वो कुछ जानवरों के शरीर में मिल जाएगा, कुत्ते के शरीर में या बिल्ली के शरीर में या हाथी या बंदर के शरीर में। और फिर भी उसके बाद में जो 50 मात्रा अभी तक बाकी है और वो कब मिलेगा, तो मानव शरीर में आएंगे तो मानव शरीर में भी कर्म भुगतना पड़ता है। तो मतलब जो मानव शरीर में हम कर्म करते हैं वह अगले सब जन्मों में हमको भुगतना पड़ता है, और वो उसको अगला मौका कब मिलता है उसको बदलने का, अगला मानव शरीर मिलेगा तभी। तो इस तरह से मानव शरीर ही वास्तव में कर्म का शरीर है। कर्म मतलब ऐसे कर्म, सब कार्य तो सब कर रहे हैं, कार्य और कर्म इसमें फर्क है। सब लोग कार्य कर रहे हैं पर कर्म मतलब ऐसे कार्य जो कर्म बंधन में हमको डालते हैं, तो वह क्योंकि हमारी स्वेच्छा का इस्तेमाल करके हम कार्य करते हैं मानव शरीर में, इसलिए कर्म बंधन होता है। तो मानव शरीर में अगर हम अकर्म करते हैं तो फिर हम कर्म बंधन से बच सकते हैं। तो कर्म और विकर्म दोनों बंधन में हमको फंसाते हैं। कोई व्यक्ति अभी बहुत धूप होती है तो सोचता है कि मैं जो मुसाफिर है, जो रास्ते पर चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनके लिए मैं पानी की योजना करता हूँ, तो मटके बना के रखता है और अच्छी तरह से भरता है, तो ये अच्छा कार्य है। पर ऐसा यदि वो करेगा तो क्या होगा, उसको अगले जन्म में कभी पानी की कमी नहीं होगी। उसका जन्म एक नदी के पास में होगा और उसको हमेशा पानी मिलेगा, पर पॉइंट यह है कि उसको जन्म लेना पड़ेगा वापस। वो जो पानी उसने दूसरे को पिलाया है वो पानी पीने के लिए वापस एक भौतिक शरीर लेना पड़ेगा और वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो वो पानी में अगर हम तुलसी डाल के देते हैं तो फिर वो भगवान का प्रसाद बन जाता है, तो फिर वो शुद्ध करता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव शरीर में हमें अकर्म करना चाहिए। तो अभी वैदिक शास्त्र जो मैं बता रहा था पहले प्रवचन में हम चर्चा की उसके बारे में, कि वैदिक शास्त्र का अंतिम उद्देश्य क्या है, अकर्म सिखाना है। अंतिम उद्देश्य जो है वह शुद्ध भक्ति सिखाना है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये भगवद गीता बड़ा विचित्र है, सर्वधर्मान परित्यज। मैं कुछ स्मार्थ ब्राह्मण का एक कार्यक्रम चल रहा था, ये भक्त बताए थे, उनका रिकॉर्डिंग दिखाया उन्होंने, तो रिकॉर्डिंग में सुना रहे थे, तो भगवद गीता रिसाइट कर रहे थे, तो भगवद गीता रिसाइट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, ये जो श्लोक था 18वां अध्याय 66वां श्लोक, सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, क्या कर दिया उन्होंने, सर्व अधर्मान परित्यज्य, धर्मान को बदल कर दिया, अधर्मान कर दिया। तो क्यों, धर्म को कैसे त्याग करेंगे हम? तो वास्तव में भगवान जो बता रहे हैं, एक है अधर्म का स्तर जब व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, पर जो धर्म है, धर्म ये भौतिक स्तर पर धर्म है। भौतिक स्तर पर धर्म क्या है, देवी देवताओं की पूजा करना या फिर पिंडदान करना, माता पिता की देखभाल करना, ये सब अच्छा है, पर ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ क्या है कि शुद्ध भगवान की सेवा करना। तो भगवान बता रहे हैं कि ये सारे भौतिक स्तर पर धर्म है, आप त्याग कर दो और मेरी भक्ति करो। तो इसीलिए यह वैदिक शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य है, सर्वधर्मांतरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अकर्म जो है ये उनका अंतिम उद्देश्य, पर कई बार ये अंतिम उद्देश्य है तुरंत समझ भी नहीं आता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने पहली बार वैदिक शास्त्र का श्रवण किया भगवान कृष्ण से, तो पहली बार उन्हें सुना तो उनको लगा कि वैदिक शास्त्रों का का मर्म है, का सार है कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्म मार्ग यही सार है। पर बाद में दूसरी बार श्रवण किया तो फिर उनको लगा अरे ज्ञान मार्ग सार है, और फिर तीसरी बार श्रवण किया तभी वास्तव में भक्ति सार है। तो अगर ब्रह्मा जी को सुनना पड़ा तीन बार समझने के लिए, और ब्रह्मा जी की बुद्धि इतनी विशाल है, तो हमारे क्या गति है। तो वास्तव में हमें भक्तों के संग से जब ज्ञान मिलता है वो बड़ा आसान हो जाता है प्रभुपाद जी की कृपा से। और फिर उसके बाद में बता रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई जो अकर्मक स्तर है सर्वधर्मान प्रत्यय, कोई कर नहीं सकता है, और कोई अकर्मा के स्तर पर पहुंच नहीं सकता है, तो क्या करना चाहिए? कि मैं मेरी इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ सकता। तो फिर व्यक्ति बोलता है, तो शास्त्र बोलते हैं ठीक है, तुम्हें इंद्र तृप्ति करनी है पर भगवान के आदेश के अनुसार करो। तो सर्वश्रेष्ठ स्तर क्या है कि भगवान अपनी लीला कर रहे हैं भगवत धाम में और हम भगवान के पास चले जाए, पर जैसे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। कई बार लोग कृष्ण के मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं ये कृष्ण अपनी दुनिया में लगते हैं, हमें हमारे कुछ परवाह ही नहीं कर रहे हैं, वो हमें कुछ आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, हमें कोई दान नहीं दे रहे हैं, हमारा संरक्षण नहीं करने हैं, वो अपनी दुनिया में लगे हुए हैं, बाकी सब देते हैं हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान का असली आशीर्वाद क्या है कि वे हमें उनके धाम बुला रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरे भगवत धाम लीला कर रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाओ। और भौतिक स्तर पर जो लोग होते हैं, धार्मिक भी क्यों ना हो, वो कहते हैं कि भगवान मैं यहाँ पे लीला करना चाहता हूँ, तुम यहाँ पे आके मुझे मदद करो, मेरी लीला में तुम मुझे मदद करो, मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है, आप मुझे मदद करो। आप सब जानते होंगे वो कहानी कि एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया और बोला मैंने लॉटरी ली है और मैं एक करोड़ की लॉटरी है। तो मुझे आप सबको पता है कहानी, कुछ वक्त बता ओके। तो एक करोड़ की लॉटरी ली है मैंने, और अगर अगर ये लॉटरी जीत जाऊंगा मैं, तो मैं आपको 50% दे दूंगा, आपको 50 लाख दे दूंगा। बोले ठीक है। तो फिर एक हफ्ता हो गया, फिर उसके बाद लॉटरी का टिकट आया, तो गया वहां पे देखने, लॉटरी का रिजल्ट आया तो जीत गया था, तो बड़ा खुश हो गया और नाचने लगा खुशी में। पर बाद में देखा कि उसको पहला प्राइज नहीं मिला था, दूसरा प्राइज मिला था, मतलब एक करोड़ नहीं 50 लाख मिला था। तो बाद में मंदिर में गया है, बोला भगवान तुम कितने बुद्धिमान हो, अपना हिस्सा पहले ही ले लिया, अपना हिस्सा आपने पहले ही ले लिया। तो इस तरह से जो व्यक्ति भौतिक स्तर पे कार्य करता है तो फिर वो क्या करता है, वो भगवान से धंधा करता है। धंधा जैसे बेईमानी होती है वैसे बेईमानी भी करने लगता है। तो वास्तव में यह स्तर क्या है, ठीक है तुमको लॉटरी का टिकट लेना है पर भगवान को संबंध मिला, भगवान को आप संबंध मिला, तो इंद्रिय तृप्ति के जीवन में भगवान को लाओ, यह उद्देश्य। तो यह शुरुआत है धर्म की। तो कि लोग इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ पता नहीं है, तो ठीक है आप इंद्रिय तृप्ति के जीवन में भगवान को लाओ। और फिर उसके बाद में अगर कोई बोलेगा हमें भगवान को लाने की क्या जरूरत है, मैं अपना अपना जीवन जीऊंगा, तो फिर शास्त्र बताते हैं कि नहीं, आपका सारा जीवन व्यर्थ है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि हम जो भी प्राप्त करें अगर भगवान को नहीं लाते हैं तो सब व्यर्थ है। क्या उदाहरण देते प्रभुपाद जी, किसको बताएं? गणित से उदाहरण देते थे, हाँ जीरो। प्रभुपाद जी बोला करते थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब एक शून्य के समान है अगर भगवान नहीं है। और यही देखते हैं हम बड़ी विडंबना कि दुर्योधन जब भगवद्गीता की शुरुआत होती है तो भगवद्गीता पहला अध्याय तो अलग अलग आचार्य अलग अलग नाम देते हैं, जो बल्लभ विद्याभूषण उसको अर्जुन विषाद योग नाम देते हैं, चक्रवर्ती बाद उसको बल्लभ विद्याभूषण सैन्य निरीक्ष योग नाम देते हैं, चक्रवर्ती बाद उसको अर्जुन विषाद योग नाम देते हैं। तो उस पहले अध्याय में दो विभाग है बेसिकली, एक विभाग है कि अर्जुन निरीक्षण कर रहा है, तो उसके आधार पर हम नाम बोल सकते हैं अर्जुन सैन्य निरीक्ष योग, और फिर बाद में अर्जुन विषाद में लगता है अर्जुन विषाद योग। तो वहाँ पे जब दुर्योधन दोनों पक्षों को देख रहा है और बता रहा है कि मेरे पक्ष में ये सब है, उनके पक्ष में वो सब है, वो सब प्रधान जो सैनिक है उनको बोलता है, यहाँ तक कि वो कर्ण को भी बोलता है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। कर्ण वहां पे नहीं है, आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में क्या हुआ, जब तक भीष्म पितामह आते तो कर्ण बोला जब तक भीष्म रहेंगे तो मैं युद्ध करने नहीं आऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे कारण जीतेंगे तो कर्ण भीष्म सेनापति है तो उनको श्रेय जाएगा, और मैं तुम्हें जिताऊंगा तो उनको श्रेय नहीं जाना चाहिए, इसीलिए युद्ध के लिए नहीं आया था। तो वहां पे पहले 10 दिन जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे तो कर्ण नहीं था, तो पर फिर भी कर्ण दुर्योधन के मन में था, इसीलिए वो द्रोणाचार्य से बात कर रहा है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, मेरे पक्ष में कौन कौन है, भगवान आप है, आचार्य है, द्रोणाचार्य है, फिर भीष्म है, और तुम तीसरा नाम किसका आया, कर्ण का आया। तो वो कर्ण जो वहां पे नहीं है उसको गणना करता है, पर जो कृष्ण वहां पे है उनकी गणना नहीं करता है। कृष्ण वहां पे है और कृष्ण युद्ध नहीं करने वाले, तो वो भी सोचते कृष्ण कुछ काम नहीं है, उनकी गणना नहीं करता है। तो भौतिकवादी जो व्यक्ति होता है वह भगवान के महत्व को समझता नहीं है, सोचता है कि भगवान के बिना ही सब कुछ हो जाएगा। महाभारत प्रसंग आता है कि आदि सातवें दिन जो होता है तो बड़े बड़े भीषण पद्धति से पांडव युद्ध करते हैं और कौरव का बड़े संख्या में विनाश हो जाता है सैनिकों का। भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है और भीम बड़ा पीटता है दुर्योधन को, और कैसे तो भी दुर्योधन का जान बच के आ जाता है। और फिर शाम को जब वो अपने पंडाल में मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं, तो फिर भीष्म जो होते हैं दुर्योधन भीष्म को पूछते हैं कि आप तो इतने बड़े योद्धा हो कि आपने परशुराम को हरा दिया, उस परशुराम को जो अकेले 21 कुलों को हरा दिया क्षत्रियों के, तो आप मेरे पक्ष में हो और फिर भी मेरी सेना इस तरह से क्यों हार हो रहा है उसका। तो भीष्म पितामह आपका सिर हिलाते बोलते हैं कि हे पुत्र, हे राजकुमार, मैं चिल्ला चिल्ला के भी मेरा गला जो है सूख गया है, मैं तुम्हें कितने बार बोला हूं, पर फिर भी तुम्हारे कल्याण के लिए मैं एक और बार बोलता हूं। देखि जब तक अर्जुन के रथ पे केशव है, महाभारत में कृष्ण को केशव इस नाम से अधिक बोलते हैं, जब तक अर्जुन के रथ पे केशव है, ऐसी कोई सेना या ऐसा कोई योद्धा ना हुआ था, ना हो है, ना होगा जो हरा सकता है। तो दुर्योधन बड़ा, क्योंकि वो देख गया कि उसकी सैनिक हार गया, उसको बड़ा गर्व होता है कि मैं भीम को हरा दूंगा, तो भीम ने उसको हरा दिया, तो ऐसे क्यों पितामह। और फिर तभी भीष्म पितामह प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अभी कृष्ण का गुणगान करने का मौका मिल रहा है, तो कृष्ण का गुणगान करते हैं। वो देखे कैसे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और कृष्ण को कभी कितने सारे असुरों का वध किया, और उनका बहुत गुणगान करते हैं। तो फिर सब सुनते हैं और बिल्कुल शांत हो जाता है दुर्योधन। दुर्योधन शांत होता है और फिर अपने पंडाल में चला जाता है सोने के लिए, और जब लेट जाता है सोच रहा होता है कि वास्तव में सही में कृष्ण भगवान हो सकते हैं क्या, पर अगर भगवान एक मानव शरीर में कैसे आएंगे, और अगर आएंगे भी तो मेरे खिलाफ क्यों हो गए, मैं तो कोई बुरा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, हाँ सब लोग कहते हैं मैं बुरा हूँ, पर वो तो सब गलत फहमी है उनकी, मैं कितना अच्छा हूँ उनको पता नहीं है, मुझे उनको पता नहीं, पर कम से कम भगवान को तो पता होना चाहिए मैं कितना अच्छा हूँ। कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, नहीं नहीं वो भगवान नहीं होंगे, तो भगवान नहीं होंगे पर फिर मेरी सेना हार क्यों रही है, और भीष्म पितामह तो बुद्धिमान है, वो मूर्ख भी नहीं है। सोचते सोचते लेट रहा होता है, तो लेटते हुए सोचता है, वो अपने हाथ जोड़ के जो पांडव के पंडाल होता है उसको रखे प्रणाम कर देता है, और सोचता है कि अगर कृष्ण भगवान है तो उनको प्रणाम करने से कुछ हानि तो नहीं होगी, कुछ कल्याण हो जाएगा, सो जाता है। कई बार ऐसे उसको बुद्धि होती है, खास करके जब वो 13वें दिन जयद्रथ का वध करने के लिए अर्जुन जाते हैं, तभी एक घंटे में भीम जो होते 30 दुर्योधन के भाइयों को मार डालता है, और 30 भाइयों को एक घंटे में मार डालता है। तो जब ये सुनता है दुर्योधन तो वो लगभग बेहोश हो जाता है, और वो देखता है कि अर्जुन को भी कोई रोक नहीं पा रहा है, अर्जुन को भी कोई रोक नहीं पा रहा है, तो और भयभीत हो जाता है वो, ताकि सही में शायद कृष्ण भगवान ही होंगे, जो भीष्म पितामह सही है, और अपना सिर पकड़े हो जाता है, अगर भगवान ही है तो भगवान के खिलाफ युद्ध करने से क्या फायदा है, कैसे जीत सकता है। पर क्या जीवात्मा की अगर इच्छा है कि भगवान के खिलाफ जाए, तो क्या करते हैं, भगवान उसको आशा दे देते हैं, उसको उसको भले ही क्या उसको साफ दिख रहा था कैसे उसके योजना विफल हो रही है, पर उसकी इच्छा इतनी थी कि भगवान के खिलाफ विद्रोह करने की, नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, अचानक मन विचार आता है, अगर कृष्ण भगवान है तो फिर हम अभिमन्यु का वध कैसे कर सके, कृष्ण को अर्जुन बड़े प्रिय है और अर्जुन को अभिमन्यु बड़े प्रिय है, अगर कृष्ण भगवान होते तो हम अभिमन्यु का वध कभी नहीं कर सकते, तो अभिमन्यु का वध हम कर पाए इसका मतलब कृष्ण भगवान नहीं है, योद्धा चलो युद्ध करो। और वो बोलता है कि कल तो हमने अभिमन्यु के खिलाफ 6 योद्धा लगाए थे, आज हम अर्जुन के खिलाफ 8 योद्धा लगाएंगे। बोलता है कर्ण और अश्वत्थामा तुम अर्जुन को आगे से आ जाओ, द्रोण और कृपा तुम बाएं ओर से आ जाओ, और शाल्य और शकुनी तुम बाएं से आ जाओ, और मैं और दुशासन पीछे से आएगी, खुद को पीछे से आएगी, और 8 योद्धा उस पर आक्रमण करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, पर कृष्ण जरूर भगवान ही है और 8 योद्धा होते हुए भी जयद्रथ का वध कर देते हैं। यहाँ पर पढ़ने में बता रहा था कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है वह से समझता नहीं है कि भगवान का महत्व क्या है, भगवान को अपने जीवन में लाने की क्या जरूरत है वो समझता नहीं है। ऐसे भौतिकवादी का बिल्कुल उत्पत्ति का प्रतीक है दुर्योधन, तो कि मुझे इंद्रियुक्ति करनी है भगवान को क्यों लाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते कि अगर भगवान नहीं है तो सारा जीवन व्यर्थ है, जो भी हम प्राप्त करेंगे वो सब जीवन के अंत में चला जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा। कोई इस जीवन में बड़ा पंडित भी बन जाता है, PhD होता है, कई PhD है उसके, तो अगले जन्म में क्या होगा उसको पुनः सीखना पड़ेगा ABCDEFG, सब कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो इसीलिए भगवान को लाना जरूरी है। तो फिर अंत में तात्पर्य भगवान जी बोलते हैं कि इसीलिए क्योंकि भगवान के बिना सब कुछ व्यर्थ है, तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं उनमें आप भगवान को लाओ। तो अगर आप प्रभुपाद जी कैसे मतलब बताया था कि आप कम्युनिज्म का पालन करना चाहते हो तो आप भगवान को केंद्र रखे कम्युनिज्म करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप राष्ट्रवादी बनना चाहते हैं, आप राष्ट्रभक्त राष्ट्रप्रेमी है, तो आप क्या करो आप भगवान कृष्ण को केंद्र में लाओ। तो प्रभुपाद जी एक बार बॉम्बे में जो हिंदी प्रवचन है बड़े सुंदर है, तो एक बार ये प्रवचन दे रहे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आई थिंक 1972 का प्रवचन था, तो तभी क्या हो गया था 71 का युद्ध हो चुका था, बांग्लादेश का विभाजन हो चुका था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप सब दुख कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान चला गया, एक हिंदुस्तान से एक पाकिस्तान चला गया, पर आप देखो हम ये प्रचार कर रहे हैं और पाकिस्तान को छोड़ सारे विश्व भर से लोग भक्त बन रहे, तो आप हमारे साथ प्रचार में आ जाओ, एक पाकिस्तान का सारा विश्व हिंदुस्तान बन जाएगा, सारा विश्व हिंदुस्तान बन जाएगा। और फिर प्रभुपाद की नम्रता देखो, पर आप सब तो प्रचार के लिए नहीं आते हैं, तो इसीलिए आप हम सबको आशीर्वाद दो कि हम प्रचार कर सकें। प्रभुपाद जी बोल रहे आप हमको आशीर्वाद दो ताकि हम प्रचार कर सकें, प्रभुपाद जी की नम्रता है। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत श्लोक आता है ना, भारत भूमि पे हो मनुष्य जन्म जात, तो उस श्लोक के आखिर में बोलते हैं कि सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग भक्त बन रहे हैं, और यह प्रभुपाद ये तो एक यह केवल है, दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वन हम्बल इंडियन, यह एक नम्र भारतीय का योगदान है। अगर सारे भारतीय लोग ये स्वीकार कर लेते तो भारत का सारा विश्व में जय घोष हो जाता था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल लोगों को राष्ट्र प्रेम है, तो राष्ट्र प्रेम में आप भगवत भक्ति लाओ। प्रभुपाद जी एक बार एक व्यायामशाला में जाते हैं प्रवचन के लिए, बुलाते हैं तो व्यायामशाला में प्रवचन के लिए जाते हैं, तो साधारण बोले हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो प्रभुपाद जी बड़े बुद्धिमान है, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप व्यायाम कर रहे हो आप पहलवान बन रहे, हाँ ये भी अच्छा है क्योंकि तो समाज में क्षत्रिय चाहिए, तो हम जो है समाज में ब्राह्मण निर्माण कर रहे हैं, तो आप सब क्षत्रियों का निर्माण करो। यहाँ पे आप देखो हनुमान जी का मंदिर था, हनुमान जी के सामने खड़ा था वो, पर देखो हनुमान जी का आपका आदर्श है, तो हनुमान जी हमेशा क्या करते थे राम नाम लेते थे, तो इसीलिए आप जब आपका उठना बैठना कर रहे हो वजन उठा रहे हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा बोलो, तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप भगवान को डाल दो। तो प्रभुपाद जी सदा बहुत विरक्त थे, तो जब पहली बार ये बॉम्बे में वो परदेश के भक्त लेके आए और वहां पे वो क्रॉस मैदान में बड़ा कार्यक्रम करने वाले थे, तो तभी वो क्या बोले श्याम सुंदर प्रभु गिरिराज महाराज इन सबको कि आप अगर कुछ बहुत ही अप्रतिम चीज नहीं करते तो आपका अमेरिकन होने का क्या फायदा है, आपका अमेरिकन होने का क्या फायदा है यदि आप कोई अप्रतिम चीज नहीं करते। प्रभुपाद जी अपने पात्र में सिखाते हैं कि आप अमेरिकन नहीं हो, आप भारतीय नहीं हो, हम आत्मा है, पर अमेरिकन होने का भाव है, अगर उस भाव के द्वारा अगर किसी को भक्ति में लाया सकता है, भक्ति की सेवा में लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो ये क्या है, जो भी हमारी भौतिक धारणाएं हैं उनको त्याग करने की जरूरत नहीं है, उनमें भगवान को ले आओ, भगवान को ले आओ। उससे क्या होगा कि उससे सब लोग जो है वो भगवान की ओर प्रगति करेंगे। तो एक भक्त थे, उसके माता पिता आ गए, वो भक्त बन गया। तो उसके माता पिता बोले आपने मेरे बेटे को ले लिया। तो प्रभुपाद जी बोले कि आपका एक बेटा है वो आपके साथ है, वो आपका भौतिक कल्याण करेगा और ये बेटा आपका आध्यात्मिक कल्याण करेगा, इस तरह से आपका सर्वांग कल्याण हो जाएगा। तो जो माता पिता थे वो उससे संतुष्ट हो गए। तो प्रभुपाद जी, तो क्या है, कई बार हमें खंडन करने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग कर रहे हैं उसमें हम उनको भगवान को लाने को बोल सकते हैं। इस तरह से व्यक्ति जो है जो कर रहा है वह त्यागना नहीं पड़ता है उसको, पर वहां से ऊपर उठ जाता है, उच्च स्तर पे आता है। और इसे प्रभुपाद जी इसको कंफ्यूज करते, तो देखिए कितना सिस्टमेटिक है प्रभुपाद जी का तात्पर्य। सबसे पहले बताते हैं कैसे हम कर्म बंधन में फंसे हैं हमारी इच्छाओं के कारण। तो उसके लिए हमें छूटना है तो हमें अकर्म करना चाहिए, पर अकर्म यदि नहीं कर सकते, अकर्म ही शास्त्रों का अंतिम उद्देश्य है, तो अकर्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कर्म करिए, विकर्म मत कीजिए। अगर विकर्म करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है, और कर्म करते हैं तो सिर्फ कर्म मत कीजिए, कर्म में भगवान को लाइए, मतलब धीरे धीरे अकर्म की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जी जो सर्वोच्च संदेश है वो देते हैं, ऐसे अलग पद्धतियां देते हैं जिससे कि हम उस संदेश तक पहुंच सकते हैं। तो किसी कोई सवाल है? यस, हाँ बोलिए बोलिए। हमारे
हमारे पास कोई चीज है और जिसे हमारे अपरोक्ष में कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर लेता है, और मैं बता दूं बाद में पूछा जाए उसके लिए जो भगवान की चीज है, तो कृष्ण की है, सारी सारी चीजें कृष्ण की है, तो इसको कोई इस वास्ते कैसे लाओ।
तो सब कुछ भगवान की है, कोई हमारे पास जो चीज है वो हमारे जानकारी के बिना इस्तेमाल कर लेता है और बोलता है सब कुछ भगवान का ही है। तो सब कुछ भगवान का है, पर वो जो भगवान ने किसी एक व्यक्ति के देखरेख में रखा हुआ है। जैसे एक जगह पे लंदन अमेरिका में एक मंदिर में भक्तों को कुछ अभिषेक करना था, उसके लिए उनको बहुत से फल फूल लाने थे। तो पास में एक बगीचा था, वो एक पड़ोसी का बगीचा था। तो भक्त सुबह जल्दी उठ जाते हैं और लोग बाकी के लोग तो रेल से उठ जाते हैं। सब भक्त उठ के पड़ोसी के घर में चले गए और सारे पेड़ से फूल तोड़ दिए और लाके विग्रहों को लगा दिया और फिर विग्रहों को सुशोभित कर दिया। तो पड़ोसी उठा देखा, अरे सारे फूल गए, कहाँ चले गए ढूंढ रहा था। तो फिर वो मंदिर में आया तो सब देखा वो फूल विग्रहों में लगा, तो बहुत गुस्सा हो गया। और क्या आप कैसे चोरी कर सकते हो ऐसे, मैंने कहा कि आप सब भक्त हो, आप भगवान का काम कर चोरी कैसे कर सकते हो। तो भक्तों ने ही बताया सब कुछ भगवान का है, भगवान को हमने अर्पण कर दिया और क्रोधित हो गया वो। तो बाद में प्रभुपाद जी के पास गया वो, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को बुलाया, बोला कि हाँ सब कुछ भगवान का है, पर भगवान ने किसी के देखरेख में उसको रखा हुआ है, तो उसके इजाजत के बिना यदि हम लेते हैं तो हम जो भगवान ने बनाया हुआ व्यवस्थापन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको उध्वस्त कर रहे हैं। तो वास्तविक सब कुछ भगवान का ही है, ये सत्य है, पर इसका मतलब नहीं है ये, तो ये जो है जो इस तरह का अर्थ निकालते हैं वो श्लोक का एक ही भाग ले रहे हैं, ईशा वास्तविकम सर्व। और श्लोक का दूसरा भाग है तेन त्यक्तेन भुंजिता, कि जो आपका है वही आप आपके पास रखो और दूसरों का मत लो। तो दूसरों का मत लो, तो भले ही वो भी भगवान का ही है पर वो भगवान ने हमें नहीं दिया है, इसलिए हम ले नहीं सकते उसको। और कोई सवाल है? यस, और भगवान को मानते हैं तो उनका इंटरेस्ट है युद्ध करने में, तो वो क्यों युद्ध कर रहे हैं उस पर निर्भर है। तो अगर कोई भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो वो युद्ध तो भौतिक स्तर पे, कोई राजनीति के स्तर पे हो सकता है, पर अगर वहां पे कोई भक्त सेना में चले जाता है, जाना पड़ता है, सैनिक ही है, जाना पड़ता है। तो ऐसे हुआ था, एक भक्त जाना पड़ा था, वो अपने गुरु महाराज से पूछने चले गए। उनके गुरुदेव बोले कि भले ही ये राजनीतिक सफ युद्ध हो रहा है, पर तुम ये सोचो कि तुम ये युद्ध धर्म के रक्षण के लिए जा रहे हो, रक्षण करने के लिए जा रहे हो। वो कैसे है कि जो अगर पाकिस्तान से मुस्लिम लोग आएंगे और वो अगर जीत लेंगे तो वे धर्म को उध्वस्त कर देंगे, मंदिरों को उड़ा देंगे, भक्तों को हानि पहुंचाएंगे। हम जानते हैं कैसे चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है, हरदास ठाकुर पर आक्रमण हुआ था, वो सब हुआ, चांद काजी ने कीर्तन रोक दिया था। तो बोले कि आप आपकी अंतरंग चेतना रखो कि आप धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो फिर आप उससे आध्यात्मिक प्रगति करोगे। तो दो चीजें हैं, मतलब क्या कार्य कर रहे हैं और किस चेतना से कार्य कर रहे हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। तो कभी कभी हमें हो सके तो हमें कार्य भी बदलना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसे परिवार में आता है जो परिवार का ही धंधा है कसाई, जानवर को मारना, बोलता है कि मैं ये कर रहा हूँ, कसाई मार रहा हूँ, मैं भगवान को सब कुछ अर्पण करता हूँ। तो भगवान बोले कि ऐसा नहीं चाहिए मुझे, आप त्याग, आप बदल दो। तो बदलने को समय लग सकता है, पर ऐसे अगर कोई ऐसा कोई पेशा है, ऐसी कोई नौकरी है, ऐसा कोई धंधा है जिसमें चार नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर उनको त्यागना चाहिए जहां तक हो सके। तुरंत नहीं होगा। पुणे में एक भक्त थे, वो भक्ति में आए तो उनके तीन पीढ़ियों से जो मुर्गी है, मुर्गी के उनका पीढ़ी का धंधा था। वो भक्ति में आ गए तो बोले कि उनको बदलना चाहिए। बोले महा मुश्किल है बदलना, नामुमकिन है, हमारा सारा जो संपत्ति चौपट हो जाएगा। तो बस जब उन्हें समझा गंभीरता कितनी है, तो फिर उनको लगभग 7 साल लगे सारा धंधा बंद करके दूसरा धंधा चालू करने में, पर कर लिया उन्होंने। तो अगर डायरेक्टली चार नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो फिर वो कार्य त्यागना चाहिए। और जो भी दूसरा कार्य हम कर रहे हैं वहां पे भी हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो कि भगवान की सेवा के भाव से यदि हम करते हैं और जो उचित कार्य करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं कि एक बार बोलते हैं कि शराबी है, उसको शराब बहुत आकर्षक लगता है, यदि वह स्मरण करता है भगवान रसो हम अब सुखते हैं, मैं पानी का स्वाद हूँ, जो अगर वो स्मरण करता है कि शराब का स्वाद मुझे आकर्षण कर रहा है, ये कृष्ण ही है, तो फिर उससे वो प्रगति करेगा और उससे एक दिन भक्त बन जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, और भक्त बन जाएगा तो बाद में शराब त्याग करेगा, अभी शराब नहीं पिएगा। तो अगर कोई ऐसे कार्य में फंस गया है जो छोड़ नहीं सकता है, तो तभी वो भी भगवान को अर्पण करना चाहिए, पर वहां से उठ के ऐसे कर्म में लगना चाहिए कि जो भगवान को प्रसन्न करे, जो अवैध ना हो, जास्तक के विपरीत ना हो। अदर क्वेश्चन, कोई सवाल है? यस मैम। पॉइंट बोलिए ना, क्या है
जोर से पढ़ो, सारे शरीर से निकलकर, शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब ये अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं, यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है।
डायरेक्टली बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है चांडोक्य उपनिषद से रूपा जी कोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है उसका हमें भाषांतर अच्छी तरह से करना चाहिए। आई थिंक भाषांतर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि हिंदी में भाषांतर होता है तो उचित नहीं होता। बेसिकली वहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं चांडो के श्लोक से, श्लोक जो निकाल रहे हैं कि जो जीवात्मा, वहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही है उस श्लोक में। एक चीज़ बताई जा रही है कि कैसे जब जीवात्मा मुक्त हो जाता है तो वो ब्रह्मज्योति में प्रवेश करता है, और ये ब्रह्मज्योति है वह उसको, वो भगवान का ही स्वरूप है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। मतलब क्या है कि वास्तव में हमने जैसे कल बता रहा था ब्रह्मन परमात्मा भगवान एक ही है, पर जो चाहता है उसमें वो उसके ओर आकर्षित होता है। तो अगर कोई ब्रह्मन में जाता भी है तो उसका स्थायी स्तर वहां पे नहीं है, वो कुछ समय तक वहां पे रहेगा वापस आ जाएगा, तो वहां पे स्थायी रूप से नहीं रह सकता है, क्योंकि वहां पे जीवात्मा की इच्छा करने की कार्य करने की इच्छा है और ब्रह्मन में कोई कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए वापस भौतिक स्तर पे आ जाएगा। हम बाद में व्यक्तिगत रूप से बात करते थे इसके बारे में। भीष्म पिता दुर्योधन को समझा रहे थे तो बताया था कि कैसे भीष्म पितामह समझाते हैं, तो क्योंकि दुर्योधन हार चुका है डर जाता है, सोचने लगता है शायद भगवान हो गए जरूर, तो भगवान हो गए तो युद्ध करने में क्या फायदा है, पर अगर भगवान हो गए तो भगवान तो इतने बड़े हैं मानव शरीर में कैसे आ सकते हैं, और मानव शरीर में आएंगे भी तो मेरे युद्ध क्यों जाएंगे, मैं तो इतना अच्छा पुरुष हूँ, लोग समझते हैं कि मैं बुरा हूँ पर वो तो गलत समझते हैं, वो लोग गलत समझ देंगे पर कम से कम भगवान तो मुझे गलत नहीं समझना चाहिए, तो ये भगवान नहीं हो गए, शायद हो गए तो भी मैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ, कुछ हानि तो नहीं होगी, प्रणाम करूँगा पर उनके खिलाफ युद्ध करूँगा, ये उसका भाव था। बिना भगवान के, हाँ कि बिना वो शायद गलत है, ट्रांसलेशन जो हुआ है ओम में बिना बिना भगवान के सब कुछ व्यर्थ है, अगर भगवान नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, इसका मतलब है। तो आई थिंक व्हाट इट वाज, इट वाज डब्ल्यू ओ विदाउट, तो डब्ल्यू ओ को उसने ओ कर दिया, ओके ओके सॉरी, डब्ल्यू ओ शॉर्ट फॉर्म है विदाउट के लिए इंग्लिश में, तो ओके नो प्रॉब्लम सॉरी, यस प्रॉब्लम। जो लोग कहाँ रहते हैं, कर्म करते हैं, अगर कोई कहता है कि हम कहते हैं कि आपको एक जन्म है अभी भक्ति करने के लिए, तो लोग कहते हैं कि 400,000 योनियां हैं मानव की, तो 400,000 योनियां मानव की है, पर जरूरी नहीं है कि हम सब 400,000 योनियों में जाएंगे, क्योंकि मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, और वो अगर हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो भगवान क्रूर नहीं है, पर प्रकृति सोचती है बताती है कि अगर आपको आहार निद्रा भय मैथुन ही करना है तो आपको मानव शरीर वास्तव में व्यक्ति है, जानवर है जिसमें कुत्ता कुत्ते रास्ते भी अपना मैथुन कर सकते हैं, मानव शरीर में आप कर नहीं सकते हैं वैसे, तो अगर आपको आहार निद्रा भय मैथुन ही करना है तो फिर आपको मानव शरीर क्यों चाहिए, आपको मानव शरीर वास्तव में उसे डिस्टर्बेंस होगा, व्यक्ति होगा आपको भोग करने में, तो इसीलिए प्रकृति कहती है कि आपको जानवर शरीर देते हैं ताकि आपकी जो इच्छा है वही पूरी कर सके आप, तो इसीलिए ऐसे जरूरी नहीं है कि भले ही 400,000 मानव की योनियां हैं तो वो 400,000 योनियों में हम सब जाएंगे, हमारे कर्म के अनुसार हमने जिस प्रकार की इच्छाएं अभी जागृत की है उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा, और आजकल का समाज अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल वो जानवर के स्तर पर ही जी रहा है, जानवर के स्तर पर जी रहा है वो, वास्तव में एक तो जानवर के स्तर पर जी रहा है आहार निद्रा भय मैथुन करना, पर कलयुग अभी इतना पतित हो गया है कि लोग, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन भी करना है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर लोग क्या करते हैं घर में बैठते हैं टीवी देखते हैं और दूसरे लोग कैसे आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं वो देख के भोग करते हैं, जब लोग टीवी देखते हैं मूवी देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, कैसे कोई भोग मैथुन कर रहा है भोग कर रहा है, तो ये केवल काल्पनिक आनंद है, तो जरूरी नहीं है कि हम सब 400,000 योनि में जाएंगे, अगर हमारी इच्छा है जानवर जैसे होगी तो हम जानवर योनि में चले जाएंगे तुरंत। 4 लाख योनियां किस लिए है? क्योंकि मानव जो शरीर, मानव आत्मा मानव शरीर में आता है तो उसको अलग अलग चेतनाएं हो सकती है। मानवों में भी अलग अलग प्रकार की चेतनाएं हैं, इसीलिए 4 लाख योनियां। और ये 4 लाख योनियां में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो देवी देवता है वह भी उनका भी शरीर मानव ही कहलाता है, क्योंकि जो 84 लाख योनि है उसमें कोई देवी देवताओं की योनि है नहीं, क्योंकि उनका भी शरीर मानव जैसे ही है। तो इसीलिए 4 लाख योनियां बहुत कुछ है। हम पृथ्वी के मानव है, फिर देवी देवता है, ऋषि मुनि है, तप लोग, जन लोग, वे सब मानव योनि में आते हैं। और उस वो प्रकार का शरीर अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए उच्च कर्म चाहिए। अपने आप से इस प्रकार का शरीर प्राप्त नहीं होगा, पर मानव शरीर का उपयोग नहीं करेंगे। मानव शरीर का उपयोग क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए। अगर वो नहीं करेंगे, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन की जिज्ञासा करेंगे, तुरंत हमको वैसा शरीर मिल जाएगा कि वहां पर हम वही कार्य कर सके। क्लियर? यस। पांच प्रकार की मुक्ति, तो ये कपिल देव अपने 3रे स्कंद में जो शिक्षा है यहाँ पे बताते हैं। तो इसमें से जो है 4 प्रकार की मुक्ति जो है, सालोक्य, सारिष्टि, सामिप्य, साथ में एक एक बोलता हूँ। सालोक्य मतलब भगवान जिस लोक में रहते हैं उनके साथ जाके रहना, उसी लोक में रहना, उसको सालोक्य कहते हैं। सामिप्य मतलब भगवान के संग में रहना। सारिष्टि मतलब भगवान जैसे ही ऐश्वर्य प्राप्त करना। सारूप्य मतलब भगवान जैसे ही रूप होना। तो ये सब प्रकार की मुक्तियाँ हैं। इसमें व्यक्ति का अपना खुद का अस्तित्व है, पर अस्तित्व होते हुए भी वह सेवा कर रहा है। तो ये प्रकार की 4 मुक्तियाँ स्वीकार कर सकता है भक्त। पर जो सायुज्य है, सायुज्य भगवान ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, तो कैवल्यम नरकायते, प्रभु राम सरस्वती कहते हैं कि तो नर्क के समान है, क्योंकि सेवा करने का कोई मौका नहीं है। इसीलिए कपिल देव जी बताते हैं कि मेरे भक्त ये मुक्ति भी स्वीकार नहीं करेंगे अगर अगर मेरी सेवा नहीं मिल रही है। तो सेवा महत्वपूर्ण है, और सेवा है तो उसी में परम आनंद है। तो इसीलिए जो ये मुक्ति है अच्छी है, हम फिर भव बंधन से हम छूट गए हैं, पर उससे बड़ी है भगवान की सेवा करना। और इसीलिए जो बृहद भागवतामृत वर्णन आता है गोप कुमार का, गोप कुमार वैकुंठ जाता है पर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए वापस वैकुंठ से अयोध्या से वो भौतिक जगत में वृंदावन में आता है, फिर कृष्ण भक्ति करके गोलोक वृंदावन जाता है। तो इसीलिए जो हमें भक्ति से प्रेम मिलने वाला है, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम भक्ति कर रहे हैं उसे प्रेम मिलने वाला है, वह ये 5 प्रकार की मुक्तियों से बड़ा ऊंचा है। ओके, यस यस। हाँ, अच्छा सवाल है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे इसलिए अर्जुन को ज्ञान दिया भगवान ने भगवीता का, तो विवस्वान को ज्ञान क्यों दिया? तो वास्तव में अगर आप देखते हैं ये श्लोक 4 अध्याय का 1 श्लोक आता है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। तो उसके पहले जो है 3रा अध्याय का आखिरी श्लोक है, 43वां श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थभ्यात्मात्मना जही शत्रु महाबाहो काम रूपम विरासतम। उसके पहले जो 36 से 43 श्लोक 3रे अध्याय के वो बता रहे हैं कैसे काम वासना को जीतना है, और उसका अंत में भगवान बताते हैं कि अगर आपको जीतना है तो बुद्धि से जीतना है। बुद्धि से आप समझो कि आप शरीर मन इंद्रिय इन सबसे परे हो, आप आध्यात्मिक तत्व हो, और बुद्धि से खुद को आध्यात्मिक स्तर पे प्रस्थापित करो और फिर आप काम वासना को जीत लो। और फिर भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ऐसे मत सोचो कि ये काम वासना पे जीतना ये केवल तुम्हारी समस्या है, ये सृष्टि जब से शुरू होती है तब से ये समस्या है, इसीलिए सृष्टि जब से शुरू होती है तब से ही मैं ये ज्ञान देता हूँ। तो भगवान ने विवस्वान को ज्ञान क्यों दिया? क्योंकि विवस्वान ये राजा है। और प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं 4.1 4 अध्याय के 1 श्लोक के तात्पर्य में कि राजा का कर्तव्य है अपने प्रजा का संरक्षण करना, पर संरक्षण केवल दूसरे चोरों से डाकुओं से शत्रुओं से नहीं है, सबसे बड़ा संरक्षण जो राजा को देना है वह काम वासना के शत्रु से। तो जो राजा है उसको जब दिव्य ज्ञान देते हैं तो फिर वो ऐसा अनुशासन करता है, ऐसी पद्धति बनाता है जिससे कि लोग काम के बंधन से बच सके। तो इसीलिए क्योंकि विवस्वान राजा थे, तो इसीलिए विवस्वान को ऐसी ऐसे मैनेजमेंट करने के लिए, ऐसे योजना करने के लिए कि अपने सारे जो प्रजा है उनको काम वासना से बचाए, वह ज्ञान उन्होंने दिया राजा को, ताकि राजा वो ज्ञान अपने समाज में, अपने राज्य में अमल कर सके। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सिर्फ युद्ध करने के लिए दिया, वो तो युद्ध करने एक परिस्थिति थी, पर भगवान ने अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि वो भी राजा है, वो भी सेवा त्याग योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से सका चेती रहस्य में, वो एक राजा है, वो राज ऋषि है, वो भक्त है। तो इसीलिए भगवान की करुणा हम देखते हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे भगवान ब्राह्मण का ब्राह्मण की भूमिका निभा के ज्ञान देते हैं, तो जैसे ब्राह्मण राजाओं को ज्ञान देते हैं, ऐसे भगवान विवस्वान को ज्ञान देते हैं, भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, ताकि राजा वो ज्ञान अपने जीवन में उतार सके। पर कुछ लोग के बाद सातवें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतां, कि अगर राजा अपना अभी जो दुष्कृतों का नाश करना, जो भक्तों का संरक्षण करना और धर्म का प्रस्थापन करना, ये कार्य किसका है, ये राजा का कार्य है। वास्तव में तीन कार्य जो है राजा के कार्य है, तो अगर राजा कार्य नहीं कर पाता है तो भगवान बोलते हैं मैं स्वयं आता हूं ये कार्य करने के, मैं आता हूं धर्म का ज्ञान धर्म की पुनः प्रस्थापना करने के लिए। तो मतलब भगवान की करुणा इतनी है कि सबसे पहले वो ब्राह्मण की भूमिका लेकर ज्ञान देते हैं ताकि समाज का कल्याण हो। ज्ञान किसको देते हैं, राजा को, ताकि राजा कल्याण कर सके। पर यदि वो देखते हैं कि राजा अपना काम नहीं कर पा रहा है तो खुद आते हैं, खुद राजा बनते हैं जैसे रामचंद्र के रूप में बने, या खुद आते हैं और अपने भक्त को राजा बनाते हैं जैसे युधिष्ठिर को बनाया, और धर्म का ज्ञान के अनुसार प्रस्थापन करते हैं, राज्य प्रस्थापन करते हैं। तो इसीलिए भगवान इतनी करुणा है उनकी। जैसे अगर हम देखते हैं आप मैनेजर हो, आप किसी को बोलते हैं ये क्लीनिंग करो, आप पहले उसको ज्ञान देते हैं ऐसे क्लीनिंग, पहले आपको पानी डालना चाहिए, सफाई करना, मोचा करना चाहिए, फिर झाड़ू लगाना चाहिए। पर अगर वो देखते हैं इसको जम नहीं रहा है तो क्या करते, खुद आते हैं खुद क्लीनिंग करते हैं। तो वैसे ही भगवान पहले ज्ञान देते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और राजा को ज्ञान देते हैं कि राजा सारे समाज में ला सके। पर अगर वो नहीं कर सकते हैं तो भगवान बोलते मैं स्वयं आके करूंगा। तो भगवान की इतनी करुणा है, इतनी चिंता है कि समाज में धर्म रहे, इसीलिए वो धर्म का ज्ञान देते हैं राजाओं को, और राजा का रूप लेके स्वयं धर्म का स्थापना भी करते हैं। तो भक्त भले का अच्छा, तो लंबा सवाल है। तो सवाल ये बेसिकली है कि कभी कभी जो जो कोई गलत कार्य कर रहा है उससे भगवान पसंद रहते हैं, अच्छा कार्य कर रहा है उसको उसे पसंद नहीं होते, उसे ना पसंद करते हैं, तो ऐसे क्यों है? ऐसी कोई कहानी है कि कोई कसाई शालग्राम पर अपने जानवर काट रहा था, तो ब्राह्मण ने आके उसको शालग्राम को ले लिया, तो भगवान ने ब्राह्मण को बताया कि मुझे वापस कसाई के पास ले जाओ। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ऐसी कहानी कहाँ बताई गई है, तो शास्त्रों में इसका कोई वर्णन है क्या? नहीं, ओके, तो मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई कहानी बोलते हैं तो सबसे पहले देखना चाहिए वो क्या है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आदि लीला में खास कर बोलते हैं कि कई बार कोई इल्यूजरी स्टोरीज इन द स्क्रिप्चर बोलते हैं ओके कि मायावादी कहानियां हैं कुछ आश्रम भक्त शास्त्र ठाकुर इसमें बहुत विवरण करते हैं तो वास्तव में ऐसी कहानियां जो है वह शास्त्रों में नहीं होती है लोग उसमें अपने मनोगढ़ंत से निकालते हैं ऐसी कहानियां और कहते हैं कि ये शास्त्र में है तो अगर ऐसी कहानी हम पहले देखना चाहिए ऐसी कहानी है या नहीं और अगर ऐसी कहानी कुछ है तो फिर हम कैसे समझें तो सबसे पहले अगर कहानी कुछ है तो उसका रेफरेंस होना चाहिए दूसरा हमें एक समझना चाहिए यहाँ पे कि कभी कभी शास्त्रों में कोई चीज़ की महिमा बताने के लिए बड़ा जोर दिया जाता है तो इसे उदाहरण है कि हम देखते हैं कि जो जगाई बधाई सब प्रकार के पाप कर रहे थे पर सब प्रकार के पाप कर रहे थे चैतन्य नित्यानंद पुरुष स्वयं उनके पास गए और उनको बोले थे आप हरिनाम लो आप हरिनाम लो आप हरिनाम लो और उन पर आक्रमण किया फिर भी क्या बोले थे आप उनके प्रति उनके लिए माफी मांग रहे थे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में उनकी कृपा की नित्यानंद प्रभु के माध्यम से पर वही चैतन्य महाप्रभु जो प्रताप रुद्र इतने नेक राजा थे भक्त थे तो वे बार बार आके भगवान से मिलना चाह रहे थे और भगवान को दर्शन देने के तैयार नहीं है तो वास्तव में कितना विचित्र है ये कि एक है जो सब प्रकार के बुरे कर्म कर रहा है उसके पास भगवान जा रहे हैं और जो भक्ति कर रहा है भक्तों को सुविधा दे रहा है राजा है उसको उसके पास जाना छोड़ दो वो उनके पास आना चाहता है भगवान से मिलने भी नहीं दे रहे तो क्या है चैतन्य महाप्रभु आपको दिखाना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं क्या सिखा रहे हैं वो जगाई मदाई के लिहाज से सिखा रहे हैं कैसे भक्त करुणामय होते हैं प्रचारक करुणामय होना चाहिए और कितना ही पतित क्यों ना हो उसके पास जाना चाहिए प्रचार करने के लिए और प्रताप रुद्र की लीला से वो सिखा रहे हैं कि वास्तव में कैसे कोई व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य में है साधारण जब कोई भौतिक ऐश्वर्य में होता है तो सब लोग उसके पास जाना चाहते हैं कोई बड़ा रईस व्यक्ति है तो वो उससे सब मिलना चाहते हैं अगर कोई किसी से सचिन तेंदुलकर से मिल गया तो एक बार मिला है तो अपने घर में फोटो बना देता है मेरा सचिन तेंदुलकर फोटो है मैं जानता हूँ उसको जानता है मुझे वास्तव में वो तो आपको जानता नहीं है पर हम कहते हैं मैं जानता हूँ उसको तो भौतिक दुनिया में जो बड़े रईस लोग होते हैं उनसे संबंध जोड़ना संबंध दिखाना यह भौतिकवादी लोग बहुत चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र की लीला दिखाना प्रताप रुद्र की लीला से दिखाना चाहते हैं कि जो भौतिक ऐश्वर्य में जो लोग रहते हैं उनसे संबंध हमें रखना नहीं चाहिए साधुओं को खास करके तो हर एक कहानी का हर एक प्रसंग का एक उद्देश्य होता है तो कभी कभी किसी एक प्रसंग का उद्देश्य एक उद्देश्य सिखाने के लिए साधारण जो स्तर है उसको उल्टा किया जाता है जैसे दुर्वास मुनि की हम लीला देखते हैं तो दुर्वास मुनि सन्यासी है अम्बरीश महाराज गृहस्थ है दुर्वास मुनि ब्राह्मण है अम्बरीश महाराज क्षत्रिय है तो वर्णाश्रम की दृष्टि देखे तो दुर्वास मुनि ऊंचे है आश्रम में भी और वर्ण में भी ऊंचे है पर क्योंकि उनमें भक्ति है तो जो जो साधारण का वर्णाश्रम का जो ब्राह्मण और सन्यासी ऊंचे है गृहस्थ और क्षत्रिय नीचे है पर क्योंकि इनमें भक्ति है तो ये उल्टा हो जाता है तो यहाँ पे मतलब क्या है भक्ति का जोर दिखाना है यहाँ पे दुर्वासा मुनि की कमी नहीं दिखानी है पर भक्ति की महिमा और अम्बरीश महाराज की महिमा दिखा रहे हैं तो हर एक कहानी का एक उद्देश्य होता है वो उद्देश्य है कि भक्ति की महिमा तो भक्ति की महिमा अगर समझना है तो हमें ये समझना चाहिए कि कैसे भगवान अंत में हृदय को देखते हैं सबके तो हृदय को देखते हैं इसीलिए अगर कोई हृदय से भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान उसे प्रसन्न हो जाते हैं पर सही में अगर वो व्यक्ति हृदय से भक्ति कर रहा है जैसे पहले स्कंद में जब भगवान द्वारका में प्रवेश करते हैं तो ऐसे बताया गया है कि वहाँ पर द्वारका में जो वेश्याएं थी वो भी उनका उनका स्वागत करने आ गई वे बोल के द्वारका में वेश्याएं कहाँ से आ गई तो वेश्या कैसे हो सकती है वहाँ पर क्या लोग अवैध संग्रह कर रहे थे वेश्याओं के लिए तो वहाँ पर वेश्या शब्द का अर्थ अलग है प्रभुपाद जी जो प्रोस्टिट्यूट या वेश्या शब्द इस्तेमाल करते हैं वो जो समाज में जैसे कोई 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 उत्सव है तो उसमें नृत्य करना है नृत्य करने के लिए स्त्रियां चाहिए तो अभी किसी की पत्नी तो सब लोगों के सामने जाकर नृत्य नहीं करेगी तो वो उस प्रकार के नृत्य करने के लिए जो स्त्रियां होती है उनको वेश्या बोला जाता है तो ऐसे नहीं कि वो सब लोग वो अपना शरीर बेच के सबसे संग कर रही है, पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो वैदिक शास्त्र में जो सत्य पतिव्रता है होना उसको बड़ा बहुत जोर दिया गया है, और इस प्रकार की जो स्त्रियाँ हैं उनको वेश्या बोला जा सकता है, पर वहाँ पे पॉइंट ये है अगर कोई वेश्या हो भी परिस्थिति के अनुसार तो वो अगर भक्ति करती है तो फिर वो तो फिर क्या होता है भगवान उसके भक्ति भाव को देखते हैं, पर अगर सही में भक्ति भाव है तो वो जो वेश्या कर रहे छोड़ दे। जैसे चंद्रमौली नारायण ने किताब लिखा है होली जेल नाम का, होली जेल आपने इसे देखा है किताब, बहुत सुंदर है। ऐसे एक जेल है, जेल से हाथ बाहर आ रहे और उस हाथ में एक भगवद गीता है, उसमें कृष्ण का चित्र है, तो उसमें सब वर्णन है कि कैसे सारे विश्व भर में भक्त जेल में प्रचार कर रहे हैं और लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ है। तो वहाँ पे एक स्त्री होती है वेश्या होती है और उसको प्रभुपाद जी का भागवतम मिल जाता है, तो भागवतम पढ़ते बड़ा आकर्षित हो जाती है, तो फिर भागवतम पढ़ती है, कोई आदमी आता है तो अपना धंधा करती है, फिर वहाँ भागवतम पढ़ती है, अपना धंधा करती है वापस भागवतम पढ़ती है, और फिर भागवतम पढ़ पढ़ के क्या हो जाते हैं वो उसे धंधा त्याग जाती है और अभी वो भक्त बन गई है। अभी आपको उसका नाम नहीं लिखा है वहाँ पे, पर पॉइंट ये है कि अगर कोई सही में भक्ति का भाव है तो भगवान किसी भी परिस्थिति में भक्ति का भाव स्वीकार कर लेंगे, पर अगर भक्त में सही में भक्ति का भाव है तो भक्त अगर कोई बुरी परिस्थिति में है, ऐसे कार्यों में लगा है जो उचित नहीं है, तो वो उससे निकलने का प्रयास करेगा, उससे निकलने का प्रयास करेगा। अगर ऐसी कहानी आपने जो बताई है वो अगर है शास्त्रों में कहीं, तो उस कहानी का एक उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान भावग्राही है, पर अगर सही में अगर वो कसाई वैसे करता है तो अगर वो सही में भक्त है तो वो त्याग देगा उसको, तो अगर किसी का भाव है तो भगवान, तो मतलब हर एक चीज को हमें दो दृष्टि से देखना चाहिए, एक दृष्टि से कि भगवान की कितनी कृपा है कि भगवान सबको अपना प्रेम दिखाते हैं, तो एक कसाई को भी प्रेम दिखाते हैं, एक वेश्या को भी अपना प्रेम दिखाते हैं, एक अनाड़ी को भी अपना प्रेम दिखाते हैं, पर अगर कोई भक्त है, भक्त को अपना प्रेम भगवान के प्रति दिखाना है तो क्या करना चाहिए, जो चीजें भगवान को प्रसन्न नहीं करती है, जो भगवान ने निषिद्ध की है, उनको त्याग करना चाहिए। तो आपको स्पष्ट हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, भगवान की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान की करुणा है वो। तो मान लीजिए अगर एक प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए अगर कोई कोई कर्मचारी से कुछ गलती हो जाती है, तो फिर कोई गलती हो जाती है तो फिर टेंपल मैनेजमेंट आपको बोलता है कि ठीक है उस वक्त आपने गलती हो गई है पर इस बार आपको माफ कर देंगे, तो ये वो टेंपल मैनेजमेंट की करुणा है, पर इसका मतलब ये भक्त को नहीं सोचा कि मैं जो किया सही किया और करते रहना चाहिए, वो गलत है और गलत को त्याग करना चाहिए। तो कभी कभी भक्त की इतनी भगवान की इतनी कृपा होती है कि ऐसे प्रभुपाद जी का एक वर्णन आता है कि हाँ वो बोलते हैं कि पहले जो पहले बार ऐसे उस काम में हुआ कि किसी भक्त को संन्यास दिया था प्रभुपाद जी ने और उसने संन्यास त्याग दिया, संन्यास त्याग दिया और फिर बाद में शर्ट पैंट पहन के आया था प्रभुपाद से मिलने, साउथ अमेरिका में हुआ ये, तो वो बड़े शर्मिंदा था और पता नहीं क्या क्या प्रभुपाद जी बोलेंगे, तो फिर वो प्रभुपाद जी का गया, उसने बोला प्रभुपाद जी जब छोटा आएगा उसने छोटा वो कार्य किया था तो चैतन्य महाप्रभु उसको त्याग दिया, क्या आप मुझे त्याग दोगे? तो प्रभुपाद जी बड़े गंभीर हो गए, प्रभुपाद जी बोले चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो सारे विश्व का प्रचार अकेले कर सकते हैं, मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं साधारण जीव हूँ और मुझे बहुत सहयोग चाहिए और आपने मुझे इतना सहयोग किया है, मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, मैं कैसे आपको त्याग सकता हूँ? तो वो ये भक्त थे, उसके हृदय पे इतना बड़ा बोझा था, सारा बोझा उठ गया वो, और फिर बाद में सब भक्त बाकी वो तो चले गए, बाकी भक्त प्रभुपाद जी को बोले थे प्रभुपाद जी आप कितना अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं, हाउ मच यू लव, हाउ आप कितना प्रेम करते हो? तो प्रभुपाद जी फिर वापस गंभीर हो गए, प्रभुपाद जी बोले कि दैट इज माई लव फॉर यू बट वॉट इज योर लव फॉर मी, कि ये मेरा आपके लिए प्रेम है कि आप कुछ भी करो मैं आपसे प्रेम करते रहूंगा, पर आपका मेरे लिए प्रेम कहाँ है? आपका अगर सही में मेरे लिए प्रेम है तो मेरी जो अपेक्षाएं है जो आपने व्रत लिए है उसका पालन करेगी आप। तो प्रभुपाद जी ने कई बार, एक तो सन्यासी थे, चार बार उनको समस्या आ गई, तो चारों बार प्रभुपाद जी ने उनको माफ कर दिया, तो पांचवें बार आपको समस्या आ गई तो प्रभुपाद जी बोले अभी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी की करुणा हमें देखनी चाहिए, बट करुणा का मतलब ये नहीं कि जो स्टैंडर्ड है वो कम हो गया या जो उचित कार्य जो अनुचित कार्य उचित बन गया। ये भगवान की इतनी कृपा है कि कोई अनुचित कार्य कर रहा है तो भी उसको स्वीकार करते हैं, पर फिर भी कुछ अनुचित है कुछ उचित है, और ये आदर्श ये है कि अनुचित स्तर से उचित स्तर पर व्यक्ति आ जाए। तो इसीलिए अगर ऐसी कहानी कहीं है शास्त्र में तो उसका भाव हमें समझना चाहिए कि भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान कोई अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति को भी स्वीकार कर लेते हैं। पर अगर भक्त भगवान के भाव को समझता है, भगवान के प्रेम को समझता है, तो अपने भाव से क्या दिखाएगा वो, कि वो खुद ऊंचे स्तर पर आ जाएगा। प्रभुपाद जी जब भारत में आते थे तो कई बार प्रवचन में बोलते थे कैसे है कि देखो ये सब पाश्चात्य देशों के भक्त है और इन्हें सब कुछ त्याग दिया है, शराब पीते थे पर अभी चाय भी नहीं पीते। तो प्रभुपाद जी बड़ा गर्व करते थे। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितार्थ के तात्पर्य में लिखते हैं, वी टेक ग्रेट प्राइड इन सीइंग द वंडरफुल एडवांसमेंट ऑफ आवर डिसिपल्स। वो बोलते हैं कि हमें बहुत गर्व होता है, नाज होता है कि हमारे भक्त शिष्य कैसे प्रगति कर रहे हैं देखकर। तो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद जी की अपेक्षा है कि सब उच्च स्तर पर आ जाए। अगर कोई वापस उसका गिर जाते हैं तो प्रभुपाद जी उसको स्वीकार करेंगे, पर अगर कोई पतन हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टैंडर्ड है या वो वही उचित है। तो मैं सारा सार में इसको बताऊंगा कि भगवान की कभी कभी कृपा होती है कि जो अनुचित स्तर पे है उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये क्या है, ये भगवान के प्रेम का लक्षण है। पर भक्त के प्रेम का लक्षण क्या है, कि वो हमेशा अनुचित स्तर से खुद को उचित स्तर पर लाएगा। तो अगर भगवान किसी कोई व्यक्ति अनुचित स्तर पे है उसको प्रेम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अनुचित स्तर उचित बन गया। वह भगवान के अहेतुकी प्रेम का लक्षण है। पर भक्त को उसको प्रेम का क्या रिस्पांस देना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, वो उचित स्तर पे आ जाए। तो महत्वपूर्ण सवाल था, इसलिए सवाल आई गिव अ लॉन्ग आंसर। इज इट क्लियर? या तो ज्ञानी व्यक्ति के भगवान ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो भगवान की कुछ योजना हो सकती है कि भगवान की योजना में पता नहीं है। जैसे आप जानते हैं वो पुरुषोत्तम चौबे नाम के जो वो व्यक्ति थे, और वो क्या कर रहे थे, उनके मदन मोहन के विग्रह थे, मदन मोहन को अपने बालक के रूप में खेलते थे उनके साथ, अपने मदन मोहन के विग्रह उसके अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। और सनातन गोस्वामी उनको बताया कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो भगवान है आप उसको अपने बालक के साथ कैसे खिला सकते हो। तो कभी कभी ऐसे होता है, किसी वक्त कोई भाव होता है, तो हमें यहाँ पे सार समझना चाहिए। सार यह है कि भगवान अगर किसी ज्ञान है पर ज्ञान के कारण गर्व हो गया, तो भगवान गर्व अगर होता है तो उसको त्याग देते हैं। हम देखते हैं इसका आदर्श उदाहरण क्या है, चैतन्य लीला में एक उदाहरण है, कृष्ण लीला में एक उदाहरण है। चैतन्य लीला में उदाहरण है दक्षिण भारत के ब्राह्मण का, और ब्राह्मण पढ़ भी नहीं पा रहे संस्कृत, और दूसरे ब्राह्मण थे वो कंठस्थ कर रहे थे। और कृष्ण लीला में यज्ञ ब्राह्मण और उनकी पत्नियों का उदाहरण। तो भगवान अगर ज्ञान है तो अच्छा है, पर ज्ञान से गर्व है तो फिर बुरा हो जाता है। ज्ञान नहीं है पर भक्ति है, गर्व नहीं है तो वो अच्छा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए। कैन यू टॉक इन इंडिविजुअली, हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। क्या है हमको जो पूरा भी करना है, गो टू द नेक्स्ट वर्स। तीसरा श्लोक हम रिसाइट करते हैं, असुर्यानां ते लोका अंधेन तमसा वृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनः। इस श्लोक में बता रहे हैं तो अगर कोई ईशावास्य के अनुसार नहीं जीता है तो क्या होगा, असुरिया नाम तिलोका, तो असुरी लोक में उसका प्रवेश हो जाएगा। और असुरी लोक क्या क्या है, अंधेन तमसावृत, वो अज्ञान और अंधकार से आवृत है। तामस्ते प्रेत्या, प्रेत्या मतलब मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति उनका गच्छन्ति चले जाएंगे। ये के च आत्महनोजना, आत्महन मतलब जो आत्मा का की हत्या करते हैं, आत्मा का वध करते हैं, ऐसे लोगों को असुरी लोगों में जन्म हो जाएगा अगले जन्म में। तो अभी यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो सबसे पहले कहते हैं असुरी किसको कहते, असुर किसको कहते हैं, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें कि असुर मतलब कोई किसी के दांत बाहर आ रहे हैं, सिंह आ रहे हैं सिर से, वो असुर है। जयदेव महाराज एक्टिव गार्ड में एक लेख लिखते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में असुरता जो है ये एक भाव है। अगर भगवान से ईर्ष्या है, भगवान के प्रति घृणा है, नफरत है, तो वो और भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना है तो असुरी भाव है। तो कहते हैं कि आपका जो लोकल राजनेता है वो भी असुर हो सकता है, आपका जो पोस्टमैन है वो असुर हो सकता है, आपका जो पड़ोसी है वो असुर हो सकता है, आप खुद भी असुर हो सकते हो। ये असल में भी है। तो क्या है कि असुरी जरूर ऐसे ऐसे लोग हैं जो राक्षस है, उनके दांत बाहर आते हैं, सिंह बाहर आते हैं, पर वो असुरी भाव केवल उनमें ही नहीं होता है, असुरी भाव किसी में भी हो सकता है। अगर हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम को, सातवें स्कंद का जो कवर है उसमें हिरण्यकशिपु भी होगा, कुछ ऐसे उसके दांत बाहर नहीं आ रहे, कुछ सिंह नहीं आ रहे उसके, वो साधारण मानव जैसे दिखता है, पर उसको राक्षस बताया गया है क्योंकि उसका असुरी भाव है। तो असुर कौन है, जो भगवान को छोड़ के स्वतंत्र रूप से भोग करता है वो असुर है। प्रभुपाद जी कोट करते हैं श्लोक, विष्णु भक्त स्मृतो देवा असुरस्तद् विपर्ययः, तो असुरस्तद् विपर्ययः। तो असुर शब्द के बहुत बड़े अलग प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ है संधि विग्रह आशु र, आशु मतलब जल्दी, र मतलब रमण, तो जल्दी भोग करा जाता है, तुरंत उसको भोग चाहिए, जल्दी रमण करा जाता है, वो असुर है। तो आजकल का जमाना है इंस्टेंट एंजॉयमेंट है, तुरंत चाहिए हमको भोग, तो आजकल ये असुरी भाव है, तुरंत हमको भोग चाहिए। तो असुर कौन है, जो भगवान से स्वतंत्र होकर शास्त्रों के उल्लंघन करके भोग करना जाता है वो असुर है। और फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी बता रहे आत्महा कौन है, तो आत्महा वास्तव में ये शब्द है, ये रहस्यमय शब्द है, क्योंकि भगवद्गीता में भगवान बताते हैं अविनाशित तद्विद्धि, पूरा दूसरा अध्याय अर्जुन को भगवान यही समझा रहे कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो यहाँ पे आत्मा, हाँ आत्मा को मारने वाला ऐसे क्यों उल्लेख किया गया है। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसे जब जब सारंग भट्टाचार्य से चैतन्य वहां पर चर्चा कर रहे हैं तभी बोलते हैं कि शास्त्रों को समझने की दो पद्धतियां हैं, एक है मुख्य वृत्ति और दूसरी है गौण वृत्ति। मुख्य वृत्ति मतलब शास्त्र में बताया है सीधा सीधा उसका वही अर्थ है, और गौण वृत्ति मतलब जो सीधा सीधा बताया है वहां उसका अर्थ न लेकर कोई और अर्थ लेना। तो उसके उदाहरण देते हैं मीमांसा का जो तत्वज्ञान है, वो उदाहरण देते हैं कि गौण वृत्ति कभी इस्तेमाल करनी चाहिए, जब मुख्य वृत्ति से अर्थ नहीं निकलता है तभी गौण वृत्ति इस्तेमाल करते हैं। तो गौण वृत्ति का मतलब क्या है, वो उदाहरण लेते हैं कि हरिद्वार शहर, हरिद्वार गंगा में है, गंगा पे है, तो अभी कोई शहर नदी के ऊपर हो सकता है क्या, तो कोई कहता है हरिद्वार गंगा पे है, गंगा गंगा पर है, तो उसका मतलब क्या है, गंगा के तट पर है, वहां पे तट भले ही लिखा ना हो तो भी हरिद्वार गंगा पर है मतलब वो हरिद्वार गंगा के तट पर है, क्योंकि हरिद्वार कोई भी शहर नदी के ऊपर नहीं हो सकता। तो इसीलिए कभी कभी हमें शास्त्र का जो शास्त्र जो बता रहे हैं उसका मुख्य वृत्ति से अर्थ नहीं निकलता है और थोड़ी गौण वृत्ति लेनी पड़ती है, पर प्रधान रूप से मुख्य वृत्ति से ही अर्थ निकालते। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, ऐसे गौणवृत्त से अर्थ नहीं निकालना चाहिए। कहते कुछ लोग कहते थे कि कुरुक्षेत्र ये वास्तव में कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र ये हमारा शरीर है और हमारे शरीर में कुछ नेक इच्छाएं हैं वो पांडव है और जो असुरी इच्छा है वो कौरव है, और जो हमारे शरीर में इनका हमारे मन में जो युद्ध हो रहा है असुरी और दैवी इच्छाओं में वही कुरुक्षेत्र का युद्ध है। वास्तव में ऐसे कुरुक्षेत्र में कोई ऐतिहासिक युद्ध हुआ ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते ये बदमाशी है, क्योंकि आज भी कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र का जब उन्होंने संशोधन किया तो वहां पे भी अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े उनको वहां पे मिले हैं। तो यहाँ पे क्या है, गौण युक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि मुख्य युक्ति सरल है। मुख्य युक्ति सरल है, क्या है कि कुरुक्षेत्र नाम की जगह है, वहां पे 5000 साल पहले युद्ध हुआ था। तो गौण युक्ति कब इस्तेमाल करनी चाहिए, जब मुख्य युक्ति से हमें अर्थ न निकले तब। तो गौण युक्ति बहुत कम बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे भगवद गीता में बहुत कम जगह पे गौण युक्ति, 700 श्लोक है उसमें गौण युक्ति ज्यादा से ज्यादा हमको 2 जगह लगती है, एक जगह है दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृत संयम, जो सब लोगों के लिए रात है वो आत्मसंयमी लोगों के लिए दिन है, और जो सब लोगों के लिए दिन है वो आत्मसंयमी लोगों के लिए रात है। तो ये वास्तव में रात और दिन तो सबके लिए एक ही है, सबके लिए एक ही सूरज जो उगता है और डूबता है। तो यहाँ पे हमें गौण युक्ति लेनी पड़ेगी। गौण युक्ति का मतलब क्या है कि यहाँ पे रात और दिन ये काल का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे रात और दिन का मतलब है कि रात वो समय जब हम कोई कार्य नहीं करता है और दिन मतलब वो समय जब कार्य करते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ वहां पे कि जब लोग जो साधारण लोग इंद्रतृप्ति करते हैं वो उनके लिए दिन है, पर वह आत्मसंयम लोगों की रात है। क्या है कर रहे, क्या फायदा है इसका, कर्म बंधन में फंस जाएगी। तो और जो आत्मसंयम के लोग दिन है वो भक्ति प्रगति आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना श्रवण कीर्तन करना, वो भौतिक वायु लोगों के लिए क्या है, ये रात है क्या, घंटे घंटे बैठकर आप जप कर रहे हो कुछ करते क्यों नहीं। तो यहाँ पे क्या है, गौण युक्ति कभी इस्तेमाल करनी है जब मुख्य युक्ति से अर्थ स्पष्ट न हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि आत्महा इस शब्द का अर्थ समझने के लिए हमें गौण युक्ति इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता है इसीलिए आत्महा इस शब्द का कुछ और अर्थ होना चाहिए, और गौण युक्ति भी इस्तेमाल करनी है तो गौण युक्ति का अपने मन के विचार तर्क वितर से नहीं करना है, शास्त्रों का आधार देखना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद तुरंत भागवतम से श्लोक कोट करते हैं, कहते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी, एक चीज है ईशोपनिषद के बारे में, प्रभुपाद जी ने जैसे बताया था ईशोपनिषद प्रभुपाद जी ने कहा कब लिखा, जब भारत में थे, भारत में बैक टू गॉडहेड चला रहे थे, तो प्रभुपाद जी का एक ही टाइपराइटर था और उस टाइपराइटर में उनके पास उनको संस्कृत टाइप करने का मौका नहीं था। तो इसीलिए आप देखिए ईशोपनिषद में और भागवतम के पहले स्कंद में प्रभुपाद जी बहुत से श्लोक कोट करते हैं पर उनका संस्कृत नहीं डालते, सिर्फ डायरेक्टली इंग्लिश है, क्योंकि तभी प्रभुपाद जी के पास संस्कृत टाइप करने का सुविधा ही नहीं था। तो श्लोक तो ओरिजिनल टाइप करवाए थे किसी और से, पर अगर इंग्लिश के अंदर संस्कृत डालना है तो बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए आप ईशोपनिषद में देखोगे बहुत कम जगह संस्कृत श्लोक कोट किए गए, उनका भाषांतर बहुत बार आता है पर संस्कृत श्लोक नहीं है। तो पहले जो भारत में प्रभुपाद जी ने किया बड़ा संघर्ष था उनके लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भागवतम से श्लोक बोलते हैं, नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारण, कि जो नर है जो नरदेह है वे एक नाव के समान है, और फिर ये नाव है, नाव के कप्तान कौन है, वो गुरुदेव है। पर शब्द बड़ा शब्द बड़ा उचित है, क्या है, कर्णधारण। कर्णधारण मतलब क्या, जो कर्ण को धारण करते कान को पकड़ते, तो गुरु का उद्देश्य क्या है, शिष्य के कान को पकड़ना, तुम गलत कर रहे हो ऐसे मत करो। तो गुरु कर्णधारण, और फिर वो बताते हैं कि जो अगर कोई नाव में जा रहा है तो नाव में अगर कोई नाव जा रहा है तो जो सागर में अलग अलग प्रकार की वायु होती है, एक वायु इधर जाती है दूसरी वायु उधर जाती है, तो जब नावी को चलाना है नाव को तो उचित वायु में अपने नाव को ले जाना बड़ा आवश्यक है। अगर वायु इधर जा रही, हवा इधर जा रही, हवा का प्रवाह इधर है और उसको इधर जाना है और वो उस प्रवाह में जाता है तो क्या होता है, उसको बड़ा मेहनत करना पड़ता है और फिर भी ज़्यादा प्रगति नहीं होती है। तो इसलिए उचित हवा के प्रवाह को पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण है। पर वो उसका क्या अर्थ है? उचित हवा के प्रवाह को पकड़ना, मतलब हमारे लिए उचित ग्रंथों का को पढ़ना। अगर हम भौतिकवादी ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर हम अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं और फिर भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? इन सब ग्रंथों से भौतिकवादी हवा आ रही है। भौतिकवादी हवा मतलब क्या? भौतिक इच्छाएं निकल रही है। जो भौतिक इच्छाएं निकलती है, फिर हम जप करने का प्रयास करते हैं, फिर हम आध्यात्मिक प्रगति करने का प्रयास करते हैं, तो क्या हो रहा है? और हवा प्रतिकूल है तो ज्यादा प्रगति नहीं होती है। तो इसीलिए भक्त हम ज्यादा कोई अखबार पढ़ते नहीं है, मैगजीन पढ़ते नहीं है, टीवी देखते नहीं है। और कोई गृहस्थ भी है तो अगर गंभीर बात आते तो उनको ये कम करना चाहिए। और शास्त्रों का अध्ययन करें तो क्या? शास्त्रों से हमें दैवी इच्छाएं, दिव्य इच्छाएं जागृत होती है। तो उचित हवा को पकड़ना बड़ा जरूरी है। तो तीन चीजें बोलते हैं, मानव शरीर एक नाव के समान है, जो गुरु है कप्तान के समान है, और शास्त्रों का अध्ययन ये उचित वायु के समान है। तो अगर ये तीनों अगर मिल गए हैं, उसके बावजूद यदि कोई ये सागर को पार नहीं करता है तो वो क्या है? वो आत्महा है। तो आत्महा का मतलब यहाँ पे क्या है? वो व्यक्ति जो आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण, आत्मा की मुक्ति के मौका को खो देता है, वो आत्महा है। तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, पर आत्मा का जो आध्यात्मिक प्रगति का मौका मिला है उसका विनाश होता है, और ऐसा विनाश जो करता है उसको आत्महा कहते हैं। और फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे?
लिबरेट द सोल, डोंट किल।
I have not written the paragraph number that you told me,
no?
No problem. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आधुनिक समाज जो है, आधुनिक समाज क्या करता है, ये आत्मा को और बंधन में फंसाता है। कैसे? कि मानव संस्कृति है कि सब लोगों में काम क्रोध लोभ की वासनाएं हैं, तो इनको कम करना चाहिए समाज में। पर आधुनिक समाज कैसे है? इन्हीं वासनाओं को बढ़ाता है। सारे एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं? सब लोभ को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से अश्लील चित्र होते हैं, लोग अश्लील कपड़े पहनते हैं, तो उससे काम वासना को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से ये आधुनिक समाज जो है, ये आत्मा का वध करने वाला समाज है। आत्मा का उद्धार नहीं, आत्मा का वध कर रहा है समाज। तो इसलिए आत्मा को अगर बचाना है तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, वो शैली अग्रवाल के घर में रह रहे थे। अग्रवाल के परिवार ने उनको जाने की सुविधा की थी। जब वहाँ पर रह रहे थे तो उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो प्रभुपाद जी देखे थे कि वो छोटा बच्चा कुछ पी रहा था। तो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, तो देख रहे थे, पर ये दूध नहीं लग रहा था, कुछ पीला पीला द्रव्य था। तो प्रभुपाद जी ने उसको पूछा, ये क्या है? उसकी माँ को पूछा तो वो बोले, ये क्या है? ये लिक्विफाइड बीफ है। मतलब गाय के मांस को द्रव्य के रूप में बनाया, और वो छोटे से बालक को पिला रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले, क्यों पिला रहे आप इसको? बोले, स्वामी जी छोटे बालक जो होते हैं उनको प्रोटीन की बहुत कमी होती है, और प्रोटीन की कमी है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो इसलिए प्रोटीन देने के लिए हम उनको क्या कर रहे हैं? छोटा बालक जो सही गलत कुछ जानता नहीं है, उसको गोमांस खिला रहे हैं, उसको गोमांस चबाने के लिए दांत भी नहीं है, तो गोमांस को द्रव्य बना के पिला रहे हैं। तो इस प्रकार की संस्कृति है कलयुग में, इस प्रकार की संस्कृति है। तो ऐसा भयंकर संस्कृति है कि आत्मा का विनाश हो जाता है। तो अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा था, तो अभी क्या हो गया, ये एक बॉम्बे में ही है, तो क्या एक मॉडल थी, वो बोले कि अगर भारतीय टीम जीत जाएगी तो मैं भारतीय टीम की प्रसन्नता के लिए निर्वस्त्र हो जाऊंगी। और फिर इतना बड़ा स्कैंडल हो गया उससे। तो फिर वो बोले कि क्या अमेरिका में स्टडी किया गया है कि इस प्रकार के विचारों से पुरुषों को प्रेरणा मिलती है। तो मैं बड़ी राष्ट्रीय प्रेमी हूँ, क्रिकेट प्रेमी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भारत जीत जाए, तो इसीलिए मैं ये भारत की सेवा के लिए त्याग कर रही हूँ। तो क्या मूर्खपा है? तो क्या है, अभी पाश्चात्य देशों में किसी भी चीज पे आप संशोधन कर सकते हैं और कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं कि संशोधन करने के लिए क्या लगता है। कुछ तो आपको सर्वे करना है और उसके रिजल्ट को उल्टा पुल्टा करना है। तो वास्तव में और सारे जो लोग थे, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कितना बड़ा त्याग है ये मूर्खता है, ये त्याग नहीं है, ये क्या है, सिर्फ कि कैसे है कि भगवान सर्वाकर्षक है, भगवान सर्वाकर्षक है, और जो जीवात्मा की स्त्री के शरीर में जाता है तो सब जीवात्माओं को सर्वा भगवान की ईर्ष्या से यहाँ पे आए हैं, जब जो भगवान की ईर्ष्या से आए हैं मतलब क्या, हर एक जीवात्मा खुद सर्वाकर्षक बनना चाहता है, तो वो जीवात्मा स्त्री के शरीर में है तो अपने शरीर का प्रदर्शन करके वो खुद को सर्वाकर्षक बनाने का प्रयास कर रहा है, मतलब ये इस प्रकार के शरीर को प्रदर्शन करना ये क्या, केवल भगवान के ईर्ष्या का प्रदर्शन है कि भगवान सर्वाकर्षक उसके स्तर को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट बोल रहे हैं कि कलयुग में ऐसी ऐसी संस्कृति नहीं है, ये विकृति है कि जो आत्मा को बंधन में फंसाती है। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि अगर आप मानव शरीर को इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, जानवर के शरीर में जाना पड़ेगा। तो कलयुग में लोगों को समझ में नहीं आता जानवर के शरीर में जाने से क्या समस्या है, पर वास्तव में जानवर का शरीर बहुत दुखी होता है। अगर मान लीजिए अगे अभी आपका अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम प्रसाद ले जाते हैं, तो हम बैठते हैं प्रसाद लेते हैं, कोई आके सर्विंग करता है कुछ हो सही आपको बोलता है, तो अगर मान लीजिए आप प्रसाद लेने को बैठते हैं और कोई आके थाल पीछे से पीटता है आपको, कितना डर जाएगा। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जानवरों की ऐसी परिस्थिति होती है, जानवरों के भी रोटी कपड़ा मकान उनको भी आहार निद्रा वह महत्व की जरूरतें हैं, पर उनकी जरूरतें हैं बड़े ही खराब परिस्थिति में पूरी होती है। अभी एक कोई मच्छर है, मच्छर वो हमको काटता है तो क्या कर रहा है, वो केवल अपना अन्न खा रहा है, पर वो अन्न खा रहा है मच्छर उसकी मृत्यु हो जाती है, कितना खतरनाक है। कोई कोई थोड़े कोई छोटा सा पंछी है वो कुछ खा रहा है तो उधर उधर रहा है, कोई बड़ा कुछ पंछी पीछे से आ जाएगा खा लेगा उसको। तो इधर नेशनल जियोग्राफी में चित्र आया, नेशनल जियोग्राफी नाम का एक मासिक होता है, तो बहुत सुंदर चित्र आया था, कैसे एक व्हाट इज द फ्रॉग, मेंढक, तो मेंढक एक मच्छर को खा रहा था, तो मेंढक आ कर रहा और मच्छर उसके सामने है और मच्छर के पीछे एक बड़ा सांप है आ आ कर रहा तो मच्छर को खा रहा है। तो वास्तव में जो जीवात्मा सोच रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूँ और पीछे से आके उसको कोई खा रहा है, तो जानवरों में जो शारीरिक जरूरतें भी है बड़े खतरनाक परिस्थिति में पूरी होती है। तो वास्तव में कोई हिरण अपने घास खा रहा है और पीछे थाड़ करके शेर आके उसको ही खा लेता है, तो जानवरों के शरीर में जो उनके मूलभूत जरूरतें हैं वो भी पूरा करना बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जानवरों के शरीर में जाना मतलब क्या, जानवरों में बहुत भय रहता है, मानव शरीर में भी भय होता है पर जानवरों के जीवन में भय बहुत है, हमेशा भय रहता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जानवरों के शरीर में जाना मतलब ये न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नुकसान है कि हमें कोई आध्यात्मिक प्रगति करने का मौका नहीं है, पर भौतिक दृष्टि से भी बड़ा खतरा है। तो इसीलिए पत्नी नहीं जाना चाहता कि जानवर के शरीर में नहीं जाना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी हम बहुत सुंदर तुलना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दो मार्ग हैं, एक है कोई इंद्रिय तृप्ति करता है, कोई दूसरा आध्यात्मिक प्रगति चाहता है। तो इंद्रिय तृप्ति करता है तो क्या होगा, उसको जानवर की योनि में जाना पड़ेगा और उसको बहुत दुख भुगतनी पड़ेगी। दूसरा मार्ग है कि वो आध्यात्मिक प्रगति करता है, तो कोई बोलेगा अरे आध्यात्मिक प्रगति करना तो बड़ा मुश्किल है, किसको यश मिलेगा, कौन शुद्ध होगा कि नहीं क्या पता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही आप शुद्ध ना हो तो भी क्या होगा, आप आध्यात्मिक जीवन शुरुआत भी करते हैं तो पूरा भी नहीं किया तो क्या होगा, आपको स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं छठे अध्याय में भगवान बोलते हैं कोई भक्त अपनी भक्ति पूरी नहीं करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मान लीजिए अभी भारत में IIT नाम का परीक्षा होता है, बहुत उसका वो विख्यात परीक्षा है, तो अगर पास हो गए तो आपको IIT में एडमिशन मिलता है, नहीं हुए तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो मान लीजिए कोई बोलता है अभी ऐसी परीक्षा है, इस परीक्षा में आप फेल हो जाएंगे तो आपको एक साल के लिए फ्री दार्जिलिंग में रहने का मौका मिल जाएगा। अभी ऐसी कौन सी परीक्षा होगी कि फेल हो गए उसमें आपको फ्री हिल स्टेशन में रहने का मौका मिलेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति ऐसी परीक्षा है कि भक्ति में आप फेल हो जाएंगे तो स्वर्गलोक क्या है, ये हिल स्टेशन के समान है। बहुत भोग मिलते हैं वहां पर, फेल हो गए तो हमको इतना आनंद मिल रहा है, तो बहुत ही होता है, कल्पना करो अगर यशस्वी हो गए तो कितना आनंद मिलेगा। यशस्वी हो गए तो शाश्वत आनंद है। और फिर तो प्रभुपाद जी का इतना सुंदर तात्पर्य है, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, आप प्रयास नहीं करोगे तो बहुत दुख भोगेगा, प्रयास करोगे यश नहीं मिलेगा तभी आनंद है, तो यश मिलेगा तो और कितना आनंद है। और फिर बाद में वापस इस पॉइंट पे आते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर इतना अच्छा मौका है, इतना अच्छा मौका होते भी अगर कोई प्रयास नहीं करता है तो कितना मूर्ख व्यक्ति है, कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और बोलते हैं कि जो आधुनिक राजनीतिक है वो लोगों को आध्यात्मिक प्रगति से दूर लेके जा रहे हैं, भौतिकवाद में फंसा रहे हैं, तो ये आजकल के असुर है, ये आजकल के असुर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो जब श्रीरंगम में गए, तो श्रीरंगम में वो क्या बोले कि मुझे इतना दुख होता है ये देखकर कि हमारे भारत राज्य का इतना सारे जगह जो है जहाँ पे हम इंडस्ट्री बना सकते थे, यहाँ पे इतना सारा मंदिर के लिए व्यर्थ चला गया है। तो मैं उस दिन की कामना करता हूँ जब ये सारे मंदिर निकल जाएंगे और भारत के नए मंदिर जो है इंडस्ट्री वो आ जाएगी। तो दुर्भाग्यवश ऐसे प्रकार के लोग जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, तो ये असुरी प्रवृत्ति से और कुछ है ही नहीं वास्तव में। तो ऐसे लोगों के कारण क्या होता है, लोगों को लगता है कि हमें आध्यात्मिक प्रगति, ऐसे लोग शिक्षण देते हैं तो असुरी प्रवृत्ति का ही प्रभाव करते हैं, का प्रचार करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। और जो असली नेता है वो प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के अनुयायी जो है हमारे गुरुवर वो है। प्रभुपाद जी अंत में बोलते हैं तात्पर्य में कि हमारे पास दो चुनाव है, दो पर्याय है। एक पर्याय है कि हम भौतिक स्तर पे हमारी भौतिक समस्याओं का हल करने का प्रयास करें, पर यह हल जो है कभी होगा ही नहीं क्योंकि अस्थाई है सब कुछ। और दूसरा है कि हम आध्यात्मिक प्रगति करें जिससे कि हम सारे भौतिक दुखों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक धाम लौट जाए। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक चुनाव करना चाहिए। तो जो ईशो परिषद में चल रहा है, दो पर्याय ईशो परिषद में दिए गए। दूसरे श्लोक में बताया कि आप ईशावास्य के अनुसार जियो तो क्या होगा, आप ईशावास्य के अनुसार न जियो तो क्या होगा। तो प्रभुपाद जी वही भाव लेते हैं। और हमारे आधुनिक समाज में तो आजकल के लोगों को आप नरक में जाएंगे बोले तो नरक का कुछ उनको नरक जानते ही नहीं, नरक का डर नहीं लगता है। पर आजकल के समाज में कैसे नरक जैसी परिस्थिति आ रही है, तो प्रभुपाद जी उसको बता के समझाते हैं कैसे हमें भक्ति में लगना चाहिए। तो कल से हम दूसरा सेक्शन चालू करेंगे ईशो परिषद का। तो अभी ये सेक्शन में क्या हुआ, ईशावास्य कि भगवान के अनुसार हमें जीना है, भगवान के विपरीत नहीं जीना है। तो ये समझ गए तो भगवान है कौन, ये परम सत्य है क्या, चौथे श्लोक से आठवें श्लोक तक पांच श्लोकों में वो परम सत्य है क्या उसका वर्णन होगा, तो वह हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। श्री ईशो उपनिषद की जय, प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद की जय। सुबह सुबह।